श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा। तो आज हम सब श्री वृंदावन धाम के दर्शन करने जाएंगे। रीबोल। तो उन स्थानों का नाम है अद्वैत वट, मदन मोहन मंदिर, कालिया घाट, बांके बिहारी जी और राधा वल्लभ जी। इसमें से कितना होगा नहीं होगा वो पता नहीं है, लेकिन संकल्प तो है। थोड़ा पास पास बैठिए तो पीछे के लोगों को बेटर होगा। तो ये कहानी बहुत जाती है पीछे, कृष्ण के समय पे। तो श्री कृष्ण भगवान जो है वो जब अंतर्धान होने का समय आया है उनका, लीला समाप्त करने का, तो उस समय वो राजा परीक्षित जो है वो चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं पांडवों की जगह पर, और वज्रनाभ को परीक्षित महाराज और भगवान दोनों ही ब्रज के राजा बनाते हैं। वो सर ना प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स वगैरह। तो ब्रज के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए फिर वो वज्रनाभ को उसका प्रमुख बनाते हैं, और भगवान उनको आदेश देते हैं कि मेरे जाने के बाद में आपको ब्रज को संवारना है। तो तीन स्तर पर उनको ब्रज को संवारने का आदेश दिया, वन, सर और विग्रह। वन यानी फॉरेस्ट, जितने भी वन यहाँ पर हैं। सर यानी जलाशय, सरोवर, और तीसरा है विग्रह, मेरे विग्रहों को स्थापन करके मेरी लीला स्थलियों को आप प्रस्थापित करना। तो वज्रनाभ जी जब ये ब्रज को संवारने का कार्य उन्होंने आरंभ किया, तो उस समय भगवान अंतर्धान हो चुके थे। वो नहीं होगा, जो भी है नहीं होगा, पुरुष जो है वही है। जय हो सूर्य नारायण भगवान की। नहीं बोल, ठीक है। भगवान अंतर्धान हो चुके थे, तो उन्होंने, भगवान अंतर्धान होने के पश्चात कुछ लोग ने कहते हैं कि अनिरुद्ध की पत्नी यानी उनकी खुद की माता उषा देवी थी, बाकी सब चले गए थे जिन्होंने कृष्ण को देखा था। बहुत जगह ऐसे लिखा है कि उत्तरा देवी भी थी जो अभिमन्यु की पत्नी थी, जो इनकी सासू थी वो भी थी। तो इन्होंने पहले मूर्ति बनाई तो जाकर दिखाई, तो माताजी ने कहा कि इनके चरण कमल जो है वो साक्षात कृष्ण के जैसे हैं। तो इस मूर्ति का नाम दिया गया मदन मोहन जी। फिर उन्होंने और एक मूर्ति बनाई, वो वापस दिखाई, तो माताजी ने कहा कि इनका जो वक्षस्थल है यानी कि यहाँ से लेकर कंधे से लेकर कमर तक, उसको वक्षस्थल कहते हैं, चेस्ट, वो कृष्ण के ही वक्षस्थल के जैसा है। तो उस विग्रह को नाम दिया गया गोपीनाथ जी। फिर आखिरी विग्रह बनाया, वो दिखाया, तो माता जी ने कहा इसका मुख कमल जो है वो साक्षात कृष्ण के जैसा है, उनका नाम दिया गया गोविंद जी। इसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूजन था, लेकिन फिर हमने थोड़ा सा स्टडी करके उसको प्रमाणित कर दिया कि चरण कमल मदन मोहन जी, वक्षस्थल गोपीनाथ जी और मुख कमल गोविंद जी। ओके। और ये तीनों जो है वो राधारमण जी में विराजमान है, चरण कमल, वक्षस्थल, मुख कमल, तीनों राधारमण जी में विराजमान है। तो उन्होंने स्थापन किया सब मूर्तियों को ब्रज में। जैसे मैं आपको कई बार कहते आ रहा हूँ कि कुछ कुंड कृष्ण के समय पर उत्पन्न हुए, कुछ कुंड पहले से ही कृष्ण के आने के पहले से थे, और कुछ कुंड कृष्ण के जाने के बाद उसमें लीला के स्मृति में बनाए गए। तो इस प्रकार से तीन विग्रह स्थापन हो गए। इन तीन विग्रहों का थोड़ा सा अर्थ हमको समझना जरूरी है। मदन मोहन जी जो है वो चरण का क्या कहते हैं उसको, चरण के प्रतिनिधि, क्या आई डोंट नो हाउ टू से, वो चरण है भगवान के। चरण का क्या, चरण का अर्थ क्या होता है, चरण से संबंध होता है। वास्तविक रूप में दिव्य स्तर पर अगर किसी के संबंध करना है तो वंदन से, चरण स्पर्श से होता है। किसी विग्रह को देखना भी है तो हम चरण को देखते हैं, पहले देखना चाहिए, फिर ऊपर हमारी नज़र बढ़ानी चाहिए, तो वो दर्शन का बहुत प्रचंड लाभ होता है। तो चरण कमल का अर्थ है संबंध। तो मदन मोहन जी संबंध आचार्य भी हैं। कैसे ना, हमारा जो जीवन है वो भौतिक दुनिया में, भौतिक दुनिया से बहुत ही लगाव हमारा है, हमारा संबंध बहुत गहरा है, इंद्रिय भोग से, इंद्रियों के विषयों से, दुनियादारी से, धन से, संपत्ति से, ये हमारा संबंध बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। और जितना परसेंट वो जुड़ा हुआ है वो तो 100% ही है, लेकिन अभी भक्ति में आने के बाद थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन शुरू हम करते हैं भौतिक जीवन 100% से। तो वो जो भौतिक दुनिया का संबंध है उसको कम करके भगवान के चरणों में संबंध करना और भगवान के चरणों के साथ संबंध को बढ़ाना और आखिर में 100% करना और यहाँ पर 0 करना, ये हमारे भक्ति मार्ग की व्याख्या है। समझ में आया आपको? ये अभी कभी हमको समझता भी नहीं, हमको लगता है सब कृष्णा कॉन्शियस है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत गहराइयों में स्वार्थ और इंद्रिय भोग की कामना छुपी रहती है। तो मदन मोहन जी का जो हमारे लिए विशेष कृपा है वो ये है कि वो अपने चरणों से हमको संबंध देते हैं, कनेक्टिविटी देते हैं, और धीरे धीरे भौतिक दुनिया से, माया से जो कनेक्टिविटी है उसको डिसकनेक्ट करने में मदद करते हैं। इसलिए वो संबंध अधिदेवता हैं, और हम सबको उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि कृपा करके आप हमें अपना संबंध दीजिए और विश्व से, भौतिक दुनिया से, इंद्रिय भोग से हमारा संबंध जो है उसको तोड़ने में मदद कीजिए। जैसे हम मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल अगर 1.5 लाख का है, 2 लाख का है, किसी भी कितना भी महंगा होगा, जब तक उसमें कनेक्टिविटी नहीं है तो उसको कुछ वैल्यू नहीं होती है। आप गेम खेल सकते हैं, बाकी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा काम नहीं कर सकते आप जो आप करना चाहते हैं। तो जब कनेक्टिविटी होती है तो 1500 रुपये का मोबाइल भी बहुत वैल्यूएबल हो जाता है, क्योंकि वो कनेक्ट करता है। और कनेक्टिविटी नहीं है, सिम कार्ड एक्टिव नहीं है, ब्लॉक्ड है, तो वो 2 लाख का कम मोबाइल भी यूजलेस है, कुछ नहीं कर सकते उससे। उसी प्रकार से हम भी एक सिम कार्ड की तरह हैं, और अभी हम भौतिक दुनिया के लिए एक्टिवेटेड हैं, पूरी तरह से हमारा जो अटेंशन है वो उधर फंसा हुआ है, लेकिन वो बनाया है सिम कार्ड भगवान के लिए, भगवान के कनेक्टिविटी के लिए। तो उसको एक्टिवेट करते हैं सत्संग, भगवान के भक्त का सत्संग जो है उसको एक्टिवेट करते हैं, और फिर वो हमको पहुंचाता है गुरुजी के पास, और गुरुजी हमारा वो फुल सिम एक्टिवेशन कर देते हैं, फुल बोनाफाइड सिम एक्टिवेशन, जो भगवान से पूरा ऑफिशियल बोनाफाइड संबंध जोड़ देते हैं। तो ये है संबंध शास्त्र। फिर आता है वक्षस्थल, यानी गोपीनाथ जी। गोपीनाथ जी की कृपा क्या है कि वो हमें संबंध किए व्यक्तियों को सेवा में लगाते हैं। अभी समझो किसी के विवाह होता है, दो लड़का लड़की के परिवारों का संबंध हो जाता है, तो वहाँ पर रुकता नहीं है वो शादी होकर, चलो दोनों अपने घर चले गए, कोई किसी ने खाली पति पत्नी साथ में रह रहे हैं, बाकी किसी का कभी संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर दिवाली आते हैं तो सब लोगों को बुलाते हैं, फिर कभी आप वहाँ जाते हैं, वो आप ले पाते हैं, फिर गिफ्ट का आदान प्रदान होता है, फिर कभी यात्रा में लेके आते हैं, कभी आप उनकी यात्रा में जाते हैं। तो संबंध जो है ना वो केवल होने पर रुकता नहीं है, उसको संबंध का बढ़ोतरी वृद्धि भी होती है, और संबंध फिर दृढ़ होता है, फिर प्रेम संबंध निर्माण होता है, फिर उसमें भी आसक्ति होती है। उसी प्रकार से भगवान के लिए किए हुए संबंध की वृद्धि सेवा से होती है। संबंध का अगला कदम है सेवा, और वो सेवा गोपीनाथ जी देते हैं, गुरु जी के माध्यम से हमको सेवा में लगाते हैं। तो सेवा हमारी कभी परफेक्ट है, नहीं परफेक्ट है, टूटी फूटी करते हैं, कभी अच्छी करते हैं, नहीं करते हैं, कभी परफेक्ट करते हैं, कभी नहीं परफेक्टली करते हैं, लेकिन लगे हैं कैसे भी करके, अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं है। तो वो सारा काम जो है वो गोपीनाथ जी कृपा से होता है, सेवा देते रहना, सेवा करते रहना। और फिर गोविंद जी ये प्रयोजन इस सेवा करते रहने की क्रिया को अभिधेय कहते हैं, अभिधेय। तो गोविंद जी जो है वो अभिधेय देव अधिदेवता है। फिर जब सेवा में परफेक्शन होता है, परिपूर्णता होती है, तो वो गोविंद जी का कृपा है। फिर वो हमें भगवान की मुरली भी सुनाई पड़ती है। भगवान की मुरली सुनाई पड़ने का मतलब क्या है? जब हृदय पूर्णतः परिपूर्णता के सर पर स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है, कोई भौतिक कलमश मन में बचता नहीं है, कोई किंतु परंतु मन में भौतिक दुनिया के विषय में नहीं है, तो फिर भगवान की पुकार सुनाई पड़ती है। इसका मतलब क्या है? भगवान सदैव पुकार रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो शोर मच रहा है ना आसपास में, तो दूर की पुकार सुनाई नहीं पड़ती। मुझे ये उदाहरण बताने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि मेरा जो ब्रजवास हुआ था उसका ये बहुत ही सलोना अच्छा एग्जाम्पल है। इधर ही आगे जाके जाएंगे लेफ्ट में तो राम जीवाई सत्संग भवन है, वहाँ पर हम रहते थे और उसका आश्रम का व्यवस्था मैं संभालता था। तो रात को 11:30-11 बजे दूर से कहीं आवाज आती थी, ओम हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, और कंटिन्यूस आता था रात भर। हम तो सो जाते थे लेकिन रात भर चलता था, अर्ली मॉर्निंग में सुनाई पड़ता, लेकिन जब दिन आता था ना ऐसे तो सुनना बंद हो जाता था। तो हमको बड़ा कुतूहल था, तो हम हमेशा जाके पूछते थे कि कहाँ से आ रही आवाज़। तो परिक्रमा में एक बार पता चला कि वो जगन्नाथ का घाट है, उधर जगन्नाथ घाट, वहाँ पर स्वयं प्रकट जगन्नाथ जी हैं परिक्रमा रास्ते पर। तो वो मंदिर में ये संकीर्तन दिन रात चलता था 24/7, लेकिन हमको केवल रात में सुनाई पड़ता था और दिन में सुनाई नहीं पड़ता था। बताइए क्यों? क्योंकि दिन में हमारे इर्द गिर्द बहुत शोर हुआ करता था, तो वो दूर की आवाज़ जो सुनाई नहीं पड़ती थी। जब हमारे इर्द गिर्द की शोर वाली स्थिति जब शांत हो जाती थी तो दूर की पुकार सुनाई पड़ती थी। तो भगवान की मुरली में क्यों सुनाई नहीं पड़ रही? क्योंकि हमारे हृदय में बहुत शोर है, काम, क्रोध, लोभ, इंटॉक्सिकेशन, मद, दूसरों के प्रति मत्सर, हाँ ये सब जो लोभ, इसके इतने शोर है, मन इतना जोर जोर से चिल्लाता है अंदर, तो भगवान जो पुकार रहे हैं वो सुनाई नहीं पड़ रहे। कभी भक्त भी पुकारते हैं, आइए प्रभु जी मंदिर में आइए, अभी जन्माष्टमी मिस किया, राधाष्टमी को तो आइए, कम से कम राधाष्टमी मिस किया, अभी इसके लिए तो आइए, कार्तिक के लिए तो आइए, तो हम भी उसको इग्नोर करते हैं, वो सुनाई नहीं पड़ता है। तो साधना का और एक पर्पज है अंदर का शोम कम करके भगवान की पुकार सुनना, सुनने की कोशिश करना। एक मैंने बताया कि माया से डिसकनेक्ट होके भगवान से कनेक्ट होना और 100% भगवान से कनेक्ट हो जाना, और दूसरा मैंने बताया कि अंदर का जो शोर है उसको कम करके भगवान की पुकार सुनने के योग्य हो जाना, या भगवान को कान देना कम से कम। तो ये तीन प्रमुख विग्रह हैं वृंदावन का, जो आध्यात्मिक अस्तित्व है ये तीन चीज़ों पर आधारित हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। प्रयोजन यानी द पर्पज, अल्टीमेट पर्पज। और जीवन की वास्तविकता क्या है, नेचुरल पोजीशन क्या है जीवन का, स्वाभाविक प्राकृतिक जीवन का स्वभाव क्या है? प्रयोजन में रहना, सदैव भगवान के साथ 100% संपर्क में रहना, परफेक्ट सेवा में रहना और उनके लिए प्रेम उत्पन्न करना, ये हमारे जीवन का स्वाभाविक स्वरूप है। जो हम अभी खोकर अभी अस्वाभाविक हो गए हैं, तो वृंदावन धाम क्या करता है? हमें अस्वाभाविक स्थिति से स्वाभाविक बनने के लिए मदद करता है। मुंबई शहर नहीं करता है, कलकत्ता शहर नहीं करता है, लेकिन वृंदावन धाम करता है। तो हमारा चित्त कितना इसमें लगा हुआ है उतना वो हमें स्वाभाविक बनाने में मदद करता है। अगर यहाँ पर भी आके हमारा चित्त शेयर मार्केट में लगा हुआ है तो फिर वो करते करने की इच्छा होते हुए नहीं कर सकता है, नहीं करेगा, क्योंकि आप चाहते नहीं हैं, आपने अपना ही स्वेच्छा से अपने चित्त को डिवाइड करके रखा है। तो जितना चित्त का हिस्सा आपने वृंदावन को दिया है उतना हिस्सा वो भरेगा। खीर के लिए जाएंगे बुफे काउंटर पे और आपके पास 5 पात्र है, बड़े बड़े पात्र जेब में रखते हैं, थैली में रखते हैं, और छोटा सा कप खीर के लिए आगे करते हैं तो उतनी खीर मिलेगी आप, और छोटा पात्र अंदर रखते हो बड़ा टोप सामने करते हैं तो टोप भर के खीर मिलेगी। क्या प्रस्तुत करते हैं आप उसके ऊपर आपको प्राप्ति हो जाती है। क्या चाहते हैं, कितना, कहाँ आपकी इच्छा है, कहाँ आपका चित्र लगा हुआ है। तो ये मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ जी और सारे जितने विग्रह हैं वो भगवान की इच्छा अनुसार प्रकट भी होते हैं और अप्रकट भी हो जाते हैं, लुप्त भी हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान के अंतर्धान होने के बाद में ये तीन विग्रह प्रकट हुए। ओके, उसके बाद हरिदेव हो गए, केशव देव हो गए, गोविंद देव हो गए, बहुत सारे अलग अलग विग्रह, शंकरषण जी, वो बलदेव जी, कृष्ण बलराम, नंदगांव के, ये सब बाद में प्रकट हुए हैं। तो अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के सीनियर पार्षद, महाप्रभु जी की कब से हम कहते हैं 35 साल पहले उनका जन्म हुआ था। तो महाप्रभु के जन्म के समय बड़े ऑलरेडी बुजुर्ग थे वो, तो वे एकांत में, कोई बात नहीं छोड़ दो, ब्रज में भजन करने के लिए आए थे। और उधर एक वट है, उसका नाम है अद्वैत वट, जमीन के सर पर है, ऊपर नहीं है। वहाँ पर वो एकांत वट वृक्ष के नीचे बैठ के भजन कर रहे थे, तो उनके सामने मदन मोहन जी अपने आप प्रकट हो गए, जो लुप्त हो गए थे। पता नहीं हमारा ऐसे कभी भाग्य होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं कि केवल उनको ही हुआ था, बाद में भी बहुत लोगों का ऐसे हुआ है। तो उनका भजन और उनका भाव देखकर साक्षात मदन मोहन जी, एक और नाम है उनका मदन गोपाल जी, प्रकट हो गए वो। तो उन्होंने वहीं पर रख के उनकी सेवा की, वट वृक्ष के नीचे। और जब महाप्रभु चैतन्य का जन्म का समय आया, तो ये सब दिव्य जीव है ना, महाविष्णु स्वयं अवतार लिए हुए, तो वो चले गए। और क्या किया उन्होंने, अपने विग्रह को मथुरा में एक चौबे को दिया। चौबा का मतलब क्या होता है, चतुर्वेदी, चौबे, चौ यानी चार, बे यानी वेद, तो चार वेदों का अध्ययन करते उनका नाम है चतुर्वेदी। और ये चतुर्वेदी ब्राह्मण जो है सब मथुरा में रहते हैं, उनका एक अलग ही औरा है। जब उनको मिलेंगे आप तो वो आपको अलग दिखेंगे, यहाँ के पंडालों को अलग दिखेंगे, वहाँ के उनका ठाट अलग है। तो पुरुषोत्तम चौबे बहुत शुद्ध भक्त थे भगवान के, और उनकी पत्नी जो थी वो प्योर वात्सल्य भाव में थी भगवान के प्रति। तो मदन मोहन जी भी ऐसे हैं ना, वो भाव को प्रतिसाद देने वाले हैं। तो मदन मोहन जी भी कभी साक्षात कभी मूर्ति, कभी साक्षात कभी मूर्ति, ऐसे उनके साथ व्यवहार करते थे। तो मदन मोहन जी भी बालक बनकर ग्वाल बालों के साथ में जमुना किनारे खेलते थे, बहुत शरारते करते थे, मस्ती करते थे, सब कुछ करते थे बालक की तरह। फिर भगवान के जाने के बाद 400 साल बाद की बात है ये, अभी अभी की बात है। और वो भी भगवान को डांटती थी, अरे कितने देर खेलते हो, कितनी शरारती करते हो, कितने वो कैसे शुद्ध माई, डांटती थी ना। कभी कभी जमुना किनारे डंडा लेके जाती थी वो, चलो अभी भोजन का समय हो गया, अभी भी खेल रहे, अभी भी खेल रहे। कभी कान पकड़ के लेके आती थी और डंडा रख के ऐसे खिलाती थी, खाओ बैठ के। तो चल रहा है उनकी सेवा, वात्सल्य का भाव, प्रेम सब चल रहा है। फिर पुरुषोत्तम चौबे जी का देहांत हो जाता है, फिर बच्चे भी चले जाते हैं, फिर बुढ़िया अकेली हो जाती है, फिर भी मदन मोहन जी की रोज सेवा कर रही है। बुढ़िया हो, बुढ़िया हो रही होते जा रही है, मदन मोहन जी उतने ही हैं। तो फिर क्या होता है, काल आगे जाता है और सनातन गोस्वामी वृंदावन में आते हैं। रामचरित प्रभु, आवाज कम हो रहा है, हो रहा है। सो उस ग्रंथ को अपने गोद में रखना। सो मदन मोहन सॉरी सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी भाई भाई हैं, रूप मंजरी, लबंग मंजरी, इनके अवतार है वो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत समय तक रामकेली में नवाब हुसैन शाह के सेवा में रहे, जबरदस्ती, मतलब उन्होंने जबरदस्ती की इनके ऊपर, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की धमकी देकर बाहर कि आप तुम्हारे पास काम करवाओ। तो बड़े कुशल थे, बड़े बुद्धिमान प्रशासक थे वो। तो एक को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, एक उनको अर्थमंत्री बनाया, और दोनों मिलकर इतना अच्छा राज्य कारोबार किया कि राजा को कोई काम ही नहीं था। राजा केवल सेना लेकर जाता था, इसको इस राज्य को पादाक्रांत करो, इस राज्य को जीतो, अपनी सीमाओं को बढ़ा देते हमेशा। तो फिर महाप्रभु की मुलाकात हुई, महाप्रभु जी खत खत का आदान प्रदान हुआ। महाप्रभु जी कहे अभी ठीक है, कुछ दिन के बाद में आप सब छोड़ के भाग के आ जाना। तो बड़ी लंबी 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 कहानी है कैसे वो दोनों ने अपना प्रचंड धन, आप हम लोग ना विचार नहीं कर सकते प्रचंड धन का मतलब क्या होता है। वो होता है ना वो युद्ध विक्रांत युद्ध नौका कैसी होती है बताए आपको, उसके अंदर बिल्डिंग भी होती है, उसके अंदर विमान भी चलता है, सब कुछ होता है। ऐसे बोट लोड भर के ओवरलोडेड सोने की मोहरें थी उनके पास, जब उन्होंने अपना प्रॉपर्टी को धन को इकट्ठा किया वो सब उन्होंने बांटा, अपना अधिकार छोड़ दिया, अपना सब कुछ त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलमति श्रेणीम सदा तुच्छवत। एक तृण के पत्ते के जरा तुच्छ मानकर सब कुछ त्याग दिया और एक कोपिन पहनकर, केवल एक कोपिन, कोई धन दौलत कुछ नहीं, वृंदावन में आए। और भगवान ने उनको आदेश दिया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान ने भी उनको आदेश दिया था कि आपको धाम को संवारना है, लीला स्थलियों को प्रकट करना है, विग्रहों को स्थापन करना है, ग्रंथों को लिखना है और लोगों को सिखाना है कैसे कैसे जीवन चलाना है। तो सनातन गोस्वामी को यहाँ आने के पहले वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु ने 2 महीने शिक्षा दी है, 2 मंथ्स एवरी डे फुल क्रैश कोर्स, किस विषय पर, संबंध ज्ञान, कैसे भौतिक दुनिया से अपना नाता तोड़कर भगवान से नाता बनाना है और कैसे उसमें आगे बढ़ना है, और वही उन्होंने अपने ग्रंथों में फिर प्रकट किया है। रूप गोस्वामी को 9 दिन दशा अश्वमेध घाट त्रिवेणी संगम पर चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी है। उनको क्या सिखाया, अभिधेय ज्ञान, कैसे सेवा में लगना है। तो वो प्रकट हुआ भक्ति रसामृत सिंधु उपदेशामृत, ऐसे प्रैक्टिकल रूप में वो सब ज्ञान प्रकट हो गया, जो सुना उसको ग्रंथों में उन्होंने लिखा। और फिर सनातन गोस्वामी आए यहाँ पर, और वो जो आप जाएंगे आज वहाँ पर मदन मोहन जी का मंदिर जहाँ पर है उस पहाड़ पर रहने लगे। वो अभी मदन मोहन जी का मंदिर वहाँ नहीं है, मतलब उस समय वो जब गए तो उसका नाम था द्वादश आदित्य टील, क्योंकि वहाँ पर कृष्ण भगवान कालिया को मारने के लिए या दमन करने के लिए नदी किनारे, नदी के अंदर, जल के अंदर कितने बहुत देर थे ठंड जल में, तो बहुत फ्रीज हो गए थे भगवान, तो वो उस टील पर गए कालिया का दमन करने के बाद में। और उस समय ऐसे एक सूर्य भी यहाँ पर आए ना, हमको हीट दे रहे हैं, से 12 सूर्य आए, एक लोकल और बाकी 11 बाहर गए, 12 सूर्यों ने मिलकर भगवान को हीट दिया, तो भगवान पहले वार्म हो गए, फिर और ज़्यादा वार्म हो गए, फिर पसीना आने लगा, फिर भगवान को पूर्ण आया पसीना, श्वेत जल निकला और वो नीचे पहाड़ के नीचे एक सरोवर के रूप में जमा हो गया, उसका नाम क्या है, प्रस्कंदन सरोवर। और उस प्रक्रिया जो है स्वेटिंग की, उसको कहते हैं प्रस्कंदन, प्रस्कंदन प्रक्रिया। जब हम 86 में आए थे तो वो प्रस्कंदन सरोवर का हमने दर्शन किया था, आज वो सरोवर नष्ट हो गया है, अभी मैदान बन गया वहाँ पर, लेकिन मेरी आंखों के सामने अभी भी है वो, उसका दृश्य नीचे एकदम बिल्कुल उसके। तो उस पहाड़ पर गोस्वामी जी भजन कर रहे थे, तो उस समय अभी आज जो वृंदावन आप देख रहे हैं वो तो पूर्ण डिफरेंट वृंदावन है, सब जगह आश्रम ही आश्रम, बिल्डिंग ही बिल्डिंग सब जगह पर, ये पूरा घना जंगल था, भयंकर घना जंगल था। यहाँ से लेकर राधा कुंड हम गए ना कल, 28 किलोमीटर का रास्ता है, यहाँ से राधा कुंड के तक सूरज की किरण एक जमीन पर पहुँचती नहीं थी, इतना घना जंगल था। अभी देखो कितने सूरज जोरदार हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, एक किरण नीचे उतरती नहीं थी सब जमीन को स्पर्श करने के लिए, इतनी सघन वृक्षावली थी। तो यही नहीं, आज हम जाएंगे सभी सभी जितना भी वृंदावन है बंसीवट तक, वो सब जंगल ही जंगल था, सारी कहानियाँ जंगल की हैं, गोपियाँ भाग के गई कहाँ से, जंगल में तो वही थी कृष्ण को मिलने के लिए, वो ऐसा नहीं था कि वो बिल्डिंग में से पैसेज में से ऐसे पास करके करके गई, नहीं। इसलिए गोस्वामी जी को भिक्षा करने के लिए मथुरा जाना पड़ता था, जो आज भी 11 किलोमीटर है। तो हम कैसे, हफ्ते में एक बार सब्जी खरीदते हैं, वैसे वो भी हफ्ते में एक बार माधुकरी करते थे, इमेजिन कितना कठोर तप का जीवन था उनका, पूरे जंगल में रह रहे हैं ऊपर से भजन कर रहे हैं और हफ्ते में एक बार जाके भिक्षा करके आ रहे हैं, आटा मिलेगा तो उसको जमुना जी के जल में भिगा रहे हैं, उसकी गोली बना रहे हैं, उसको लकड़ी में डाल रहे हैं, ओवन मतलब ड्राई ओवन, उसको बेक करके खा रहे हैं भगवान को भोग लगा के। तो एक दिन भिक्षा करते करते इसी बुढ़िया के घर पे पुरुषोत्तम चौबे की पत्नी, अभी वो अकेली है, तो वो उस समय शाम के समय मदन गोपाल जी को डंडा दिखाकर डांट डांट के खिला रही है, और ये बाहर खड़े हैं भिक्षा लेने के लिए, वो देख रहे हैं मैया क्या कर रही है, तो मैया को कहते हैं मैया ऐसे नहीं खिलाना होता है भगवान को, भगवान को खिलाने की विधि होती है, क्योंकि उन्होंने सब विधि सिखाया ना चैतन्य महाप्रभु से, हरि भक्ति विलास कितने ग्रंथ लिखे हैं उसके लिए, सब कुछ कैसे करना है, उत्सव कैसे मनाना है, डीटी वर्शिप कैसे करना है। तो वो मूड में थे, तो माता बहुत सिंपल सी थी, वो बहुत एकदम घबरा गई, बोले महाराज जी बता रहे मैं कितनी गलती कर रही हूँ, कब से जो डांट रही हूँ उसको मैं, और ये कह रहे भी गलत है ये, तो उसे कहते ऐसे ऐसे मंत्र बोलना है, ऐसे ऐसे फिर आरती उतारना है। तो तुरंत माता का भाव ही चेंज हो गया, एकदम क्षमा मांगने लगी भगवान से, बोले कि माफ़ करना मुझे, कल से मैं आरती उतारूंगी, कल से घंटी बजाऊंगी। तो भगवान को वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि तो भगवान उसके डांट फटकार में बहुत आनंदित थे। भगवान कहते हैं ना, जब गोपियां गाली देती हैं तो देवता लोग जो मेरे लिए रुचाएं और सुक्त और स्तोत्र जो गाते हैं ना, मुझे उससे हजारों गुना अधिक आनंद आता है जब गोपियां मुझे गाली देती हैं। हाँ, कोई चोर बोलता है, कोई नटखट बोलता है, कोई शिष्टाचारहीन बोलता है, कुछ भी बोल लेते हैं उनको, कई गालियाँ की गालियों के पद हैं। हाँ, वो नंदगांव बरसाने में बहुत फेमस है, और गालियों के पद की एक प्रतिस्पर्धा भी होती है, नंदगांव के गोस्वामी यहाँ बैठते हैं, वो गालियाँ देते हैं कविता में गाद्य वाद्य के साथ, फिर जवाब में ये भी गाली देते हैं, और इसको कहते हैं नोक झोंक। नोक झोंक का एक अलग समाज होता है, अलग अलग फेस्टिवल में होता है वो। तो भगवान कहते हैं कि मुझे ये ब्रजवासियों की गाली बड़ी अच्छी लगती है। खैर कोई बात नहीं, तो भगवान को ये जो रस भंग हुआ उसमें बड़ा आनंद नहीं आया, फिर ये भिक्षा लेके चले गए घर पे, तो वृंदावन में रात को स्वप्न आया उनका, उन्होंने कहा सनातन तुमने तो मेरा पूरा मूड ही बिगाड़ दिया, मैया का मूड पूरा बिगाड़ दिया, मैया भी मुझे हाले आरती है स्तोत्र ही सुनाती है। तो मुझे भी नहीं रहना वहाँ पर, तो मैया वापस रिटर्न नहीं हो सकते अपने भाव में, क्योंकि एक बार आपने उधर उनका डिस्कनेक्ट कर दिया तो भी वो कनेक्ट नहीं हो सकते। तो आप अभी कल वापस जाओ भिक्षा मांगने के लिए, और वो मुझे आपको दे देगी भिक्षा में, भिक्षा के साथ, और मुझे लेके चलना, मैं आपके साथ रहूँगा अभी। और मैया को स्वप्न दिया कि कल जो बाबा आए थे आज वो दोबारा आएंगे, तो मुझे उनको दे देना भिक्षा में। तो मैया बहुत रोई, सपने में बहुत रोई, अरे मैंने बड़ा अपराध कियो, मैंने बड़ा अपराध कियो, लाला को अपराध कियो, लाला नाराज आएगा, वो बेजा रोए, क्या करें, लेकिन भगवान का आदेश है, तो उन्होंने रोते रोते भगवान को सुपुर्द कर दिया। और सनातन जी उनको लेके जा रहे हैं मथुरा से वृंदावन, तो कह रहे देखो महाराज जी, मतलब भगवान को कह रहे हैं कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, पेट के नीचे रहता हूँ, हफ्ते में एक बार भिक्षा मांगता हूँ, वो भी वो बाटी बनाता हूँ, नमक नहीं, मिर्च नहीं, कुछ नहीं, मिठाई नहीं, मक्खन नहीं, घी नहीं, कुछ नहीं होता है उसके अंदर, और आप तो बड़े मिठाई के लोभी हो, मेरे पास कुछ नहीं होगा, क्या करोगे मेरे साथ रह के आप? कहते जो तुम खिलाओगे वो मैं खाऊँगा, पर कभी कुछ मांगूंगा नहीं कि ये चाहिए वो चाहिए, नमक क्यों नहीं, मक्खन क्यों नहीं, मिश्री क्यों नहीं, कुछ नहीं, जो भी आपका है ठीक है। तो ठीक है फिर, तो वो उनको वो टील पर लेके आए और टील में रहने लगे, उनकी वहाँ पर सेवा होने लगी, रोज़ अपनी बाटी, एक ही देखो आप सोचो, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, कुछ लोग सैंडविच ही खाते हैं अमरीका में, तीनों टाइम अलग अलग, कभी केला डालते हैं, कभी अवोकाडो डालते हैं, कभी कुछ डालते हैं, थ्री टाइम सैंडविच, बड़ा अजीब लगता है मुझे, ये भी कोई डाइट है, वो भी अमीरों का डाइट है, वो मिलियनियर्स, दे ईट वन डे वन इन द मॉर्निंग चीज सैंडविच, आफ्टरनून अवोकाडो सैंडविच, इवनिंग बनाना सैंडविच, लेकिन सैंडविच इज कॉमन इन दैट, हम लोग तो रोटी सब्जी पकौड़ा सब खाते हैं बढ़िया से आनंद से, भारत का जीवन बहुत श्रेष्ठ है। सो ये सुबह शाम दोपहर को जब भी खाते हैं, दिन में एक बार बाटी ही खाते हैं, एक आइटम फिक्स है उनका, क्या बोलेंगे, तो आखिर मदन मोहन जी तो मदन मोहन जी है ना, वो बहुत दिन के बाद बोले उनको, अरे महाराज जी क्या बाटी खा लगे, ना नमक है उसके अंदर, ना कोई घी है, क्योंकि चौपड़ने के लिए कुछ रहे नहीं, कुछ तो करो, तो मैंने आपको कहा था कि मेरे पास कुछ नहीं होगा, मैं आपको नहीं दे सकता। तो ठाकुर जी कहते हैं मैं अपनी व्यवस्था कर लूँ क्या? तो हाँ करो, अपने आप व्यवस्था करो, ठाकुर जी को भी वही चाहिए था। ठाकुर जी ने लीला रचाई, उन्होंने कहा कि एक व्यापारी को ना मुल्तान, रामचंद्र कपूर नाम का व्यापारी था, उसको मुल्तान से भेज दिया, वो नमक का व्यापारी था, तो उसको ना वहाँ से आके बोट से आकर आगरा में यमुना जी के किनारे उतर कर आगरा में वो नमक बेचना था मार्केट प्लेस। तो वो वृंदावन के रास्ते से आए, तो वृंदावन के रास्ते में उसका जहाज़ जो है यमुना जी में फंस गया तूफान में, तो कैसे भी करके छलांग लगाया और किनारे पे आया, और वो बचाओ बचाओ करके चिल्ला रहा है। तो मदन मोहन जी कुछ बाल बालों के साथ वहाँ पर यमुना के रेत में खेल रहे हैं, सामान्य बालक बनकर, तो उनको ही पूछते अरे कोई है बचाओ कोई है, तो मदन मोहन जी स्वयं कहते हैं कि टील पर एक बाबा बैठे हैं, वो बहुत सिद्ध बाबा हैं, वो बचाएंगे आप, उनके पास जाओ। तो उनको भेज देते हैं ऊपर, तो वो ढूंढे ढूंढे आता है सनातन बाबा कौन है, तो उनके चरणों में गिरता है महाराज जी। तो उनके ना जेब में भी बहुत सारी नमक की पुड़िया वगैरह थी, जब दंडवत करते हैं कुछ नमक की पुड़िया गिर जाती है। एक काम हो गया, फिर वो बोलते हैं महाराज जी कुछ करो, मेरा जहाज उधर फंसा हुआ है। तो महाराज जी कहते हैं नीचे मदन मोहन जी है, वो आपके जहाज को बचाएंगे। तो जब ये ऊपर जाते हैं, मतलब मदन मोहन जी के भक्त की शरण लेते हैं, तो तुरंत मदन मोहन जी अपना फेटा निकालते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं आकाश में, हवा को मैनिपुलेट करते हैं और उसको पूरा खींच के किनारे लेके आते हैं, इसको जहाज को। तो वो देखकर बड़ा आश्चर्य होता है उसको, ये लड़का कह रहा है कि बाबा बचाएंगे, बाबा कह रहा है कि मदन मोहन जी बचाएंगे, उनको पता नहीं मदन मोहन जी कौन है। एनीवेज तो जहाज बचता है पूरा, तो वो बहुत भावुक हो जाता है, कहते हैं महाराज जी ये तो जहाज गया ही था, मेरा था ही नहीं ये, अभी पूरा जहाज वापस आ गया, मतलब ये आपका ही है, मैं आपको देना चाहता हूँ इसका धन सब। तो मदन मोहन जी गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं, मुझे तुम्हारे धन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मदन मोहन जी जो पेड़ के नीचे रह रहे हैं उनके लिए मंदिर बनाओ आप। बोले ठीक है मैं मंदिर बना देता हूँ। उसके पहले मदन मोहन जी ने पत्थर में कुआं बनाया था, टील में, जो अभी भी ऊपर है, मदन मोहन जी का वेणुकूप है उधर, आज भी मीठा पानी निकलता है अनंत कंटिन्यूसली, आप जरूर जाइए उसको पीजिए, बहुत मीठा और स्वादिष्ट जल है। तो फिर मदन मोहन जी के लिए वो गया, फिर वहाँ से वो आगरा गया बोट लेकर बेचने के लिए। और देखिए जब आप कुछ संकल्प करते हो ना कि भगवान को देना है, समझो आपने अभी यहाँ बैठ के संकल्प किया, मैं कितनी बार बोल रहा हूँ बरसाने का अस्पताल बनाना है, आपको देना है, आप दीजिए कृपा करके, आप दीजिए, अपने मित्रों को इंस्पायर कीजिए, उनको भी दीजिए, सबको सेवा में लगाइए, राधा रानी की सेवा में लगाइए, और आप मन में कुछ संकल्प करते कि मुझे इतना देना ही है कुछ भी हो जाए। ये हमारे ना वो है ना क्या नाम उसका, अर्थ फोरम, इसका फाउंडेशन है। जैसे ही अर्थ फोरम के माध्यम से कोई बिजनेसमैन लिखता है अपने ऑफिशियल कागज़ में कि 50% पार्टनर मेरे भगवान हैं गोपीनाथ जी, और एक्चुअल 50% प्रॉफिट मैं उनको दूंगा जो उनकी सेवा में, उनका बिजनेस दिन चौगुने रात 8 गुने बढ़ा हुआ है अमेजिंगली। मेरे को कितने एग्जाम्पल दिए उन्होंने, संकल्प करते ही 300 टाइम उनका बिजनेस बढ़ गया है, 300 टाइम्स। तो हम सोचते हैं कि भगवान को कुछ देना है 50% वो भी, क्योंकि जिन्होंने 50% का प्रॉमिस किया और कुछ दिया ही नहीं उनका बिजनेस वहीं ठप है, और जिन्होंने 50% दिया एक बार भगवान को कन्विंस किया कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कर रहा हूँ, उनका बिजनेस 3 साल में 300% हो गया है, और वो फिर भी 50% दे रहे हैं। एक नया आइडिया है, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा तो भगवान की सेवा भी होगी, और आपको भी दिव्य अनुभूति प्राप्त होगी कि सब कुछ भगवान का है, मैं खाली बीच में माध्यम हूँ। धन तो वो देते हैं वो लेते हैं, उनकी इच्छा है, हम छीन के रख देते हैं तो हम सफर हो जाते हैं, देते हैं तो बढ़ते जाता है। तो इसका प्रमाण है ये व्यक्ति आगरा गया नमक लेके, उसका नमक ऑटोमेटिकली कपूर में ट्रांसफर हो गया, रूपांतर हो गया उसका, इट टर्न्ड इनटू कैम्फर। और सब जानते हैं आप कि नमक का भाव क्या होता है और कैम्फर का भाव क्या होता है, अनेक गुना उसको वहाँ पर कैम्फर में भाव मिला तो नमक में मिलता था, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेके वो आया और उसने मदन मोहन जी का मंदिर बनाया। ऐसा नहीं बोला अच्छा हो गया नमक कपूर हो गया, तो अपना तो नमक का वादा था तो नमक का भाव रखते हैं और बाकी वाला कपूर वाला जो ऊपर का है वो दे देते हैं, मतलब चालाकी करते थे, तो नहीं होता था उनके हाथ से। देखो तो भगवान की सेवा मिल रही है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये वो कर सकता था ना कि मैंने नमक का वादा किया था तो नमक का जो लोड बेचने के बाद जितना मिलता था वो देता हूँ, बाकी ऊपर रखता हूँ मेरी जेब में, और कैंपर का जो भाव था वो नमक के कई गुना था, मतलब इसको ज़्यादा प्रॉफिट जेब में रखने की संभावना थी, और लॉजिकली वो आर्ग्यू भी कर सकता था। तो उन्होंने कहा कि ये पूरा नमक मेरा था ही नहीं, वो नमक है गोल्ड बनता अगर जानता था तो भी वो उनका ही है, कैंपर बन गया तो भी उनका ही है, और कुछ बनता तो भी उनका ही है। इसको कहते हैं क्या कहते हैं उसको, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी यानी अपने उसूल को, आदर्श को किसी स्थिति में भी पालन कर लेना, स्थिति बदल गई तो भी वो उसूल आदर्श छोड़ते नहीं है व्यक्ति, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जब गरीब थे तो कुछ वादा किया था, वो द्रुपद राजा ने कहा था कि जब तुम आओगे मैं आपको आधा राज्य दे दूंगा, तो जब राजा बन गया तभी तो विद्यार्थी था ना द्रुपद, विद्यार्थी था ये भी, विद्यार्थी थे द्रोण, तो फ्रेंडशिप में कह दिया मैं राजा बनूंगा ना आपको आधा राज्य दे दूंगा, लेकिन राजा एक्चुअली बना तो कुछ भी नहीं दिया उसको, वो गरीब बेचारा ब्राह्मण द्रोणाचार्य मांगने को आया था, लेकिन तभी वातावरण बदला था, इसकी मति भी बदल गई थी पूरी, ही वॉज टोटली चेंज्ड, ही कुड नॉट कीप हिज वर्ड। और ये भी एक महाभारत का युद्ध का पूरा कारण है, द्वेष का कारण। प्रतिशोध। तो उन्होंने मंदिर बनाया, और जब मंदिर जब बन रहा था तभी सनातन गोस्वामी भ्रमण कर रहे थे, कुछ समय उधर पावन सरोवर में रहे, कुछ समय चक्रेश्वर महादेव के पास रहे, जिनको आपको मैंने कल बताया, और उनके मंदिर के पूरा होने के पहले वो चले गए, लेकिन उनके शिष्य ने उन मंदिर का कार्यभार संभाला और मदन मंजू का मंदिर जो है 1670 में यहाँ पर स्थापित हो गया, आई थिंक 1570 शायद 1570, क्योंकि 1670 में औरंगजेब ने आके ऊपर आक्रमण किया था। तो 100 साल तक ये वैभव चलता रहा ब्रज का। उसके बाद रूप गोस्वामी भी उसी में आए थे, और उनको पता था कि गोविंद जी कहीं ना कहीं भजनधाम से बनाए हुए हैं, वो हर घर गए, हर ब्रजवासी के पास गए, उन्होंने पूछा, इंक्वायरी किया, गोविंद जी का कोई कुछ ठिकाना कुछ पता, किसी के घर में पूजा कर रहे हो, किसी को पता नहीं, ऐसी कुछ अवस्था है तो बता दीजिए, लेकिन गोविंद जी कहीं नहीं मिले। फिर वो ध्यानस्थ हो गए, प्रार्थना करने लगे, गोविंद जी अभी आप ही अपने आप को प्रकट करो। तो एक चमत्कार हुआ, ये सब भगवान चमत्कार करके ही प्रकट होते हैं। ये जैसा टील है ना, वहाँ पर भी एक टील है, योग पीठ कहते हैं उसको, भी थोड़ा सा ऊँचा है ऐसे, उस पर वो भजन करते थे उसके ही नीचे आसपास। तो रोज वहाँ पर एक गाय आती थी और फिक्स टाइम पे वो टील पर चढ़ती थी, खड़ी होती थी, अपना सारा थन खाली करती थी, दूध पूरा छोड़ती थी। गाय को हमेशा ना वो दोना पड़ता है तभी दूध निकलता है, लेकिन जब बहुत प्रेम का वेग होता है ना तो माँ का भी, हमारे मनुष्य जीवन में भी माँ का भी धार निकल जाती है, तो वो पूरा अपना थन खाली करके निकल जाती थी। तो ग्वाल बाल बड़ा परेशान, और जो गौचारण करने जाती है गैया, और थन खाली करके आते हैं, शाम के समय दूध निकालना होता है ना, तभी थन खाली पूरे, तो बड़ा परेशान था वो, क्या राज है। एक बार उसके पीछे पीछे आया वो, और देखा कि ये गाय सारा दूध छोड़ रही है, तो वो ऐसा डंडा लेकर उसको मारने वाला था, तभी उनको रोका गया, अरे मत मारो, गाय है गाय है। तो ये बात रूप गोस्वामी तक पहुंची, तो उन्होंने कहा कुछ अद्भुत चमत्कार है। तो सोच ही रहे थे तो उस रात को स्वप्न में गोविंद जी आए, बोले कि मैं उसके नीचे हूँ, उस टील के नीचे, इसलिए वो मेरी सुरभि गैया मुझे दूध देती है रोज आके, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें से मुझे निकालो और अपने पास रखो। तो ब्रजवासियों की सहायता से रूप गोस्वामी ने वो बहुत कोमल खुदाई की वहाँ की, और गोविंद जी के विग्रह प्रकट हुए। तो वो भी उधर पेड़ के नीचे रहते थे और उनकी सेवा करते थे। तो उनके गुरु भाई जो है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, उन्होंने गोविंद जी का बहुत सेवा किया है डीटी वर्शिप के रूप में। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है ना, वो 6 प्रकार के रागों में श्रीमद् भागवतम गाते थे, वुड सिंग भागवतम 6 डिफरेंट रागस। तो उनका गायन सुनने के लिए बहुत संत लोग दूर दूर से आते थे, उनका ज़्यादा बोलबाला नहीं है, बहुत नम्र थे वो, किधर भी उनका ज़्यादा नाम नहीं है, लेकिन वो बहुत गहरे भागवत के भक्त और भगवान के भक्त थे। तो इनके शिष्य थे अकबर के 9 रत्नों में से एक, नहीं अकबर के मंत्रिमंडल में से एक, वो थे मान सिंह, राजा मान सिंह, जो अकबर के दरबार में सेनापति थे, ये इनके शिष्य थे। तो वो जब उनको मिलने आए, बोला गुरु महाराज कुछ सेवा का बताओ आप मुझे, हम तो सन्यासी, हमको सेवा की जरूरत नहीं है, लेकिन गोविंद जी पेड़ के नीचे बैठे हैं, उनके लिए मंदिर बना दो। तो मान सिंह ने अकबर राजा को कन्विंस करके, इतना दर्रा था उनका, अकबर राजा को कन्विंस करके बहुत सारा धन अकबर के दरबार तिजोरी से सैंक्शन करवाया। हम लोग ऐसा बोलते ना 5 कोटी, ऐसा नहीं, मे बी 5,000 करोड़, मे बी 10,000 करोड़, आई डोंट नो हाउ इट मस्ट बी। उस समय का जमाने का मंदिर देखो, इतना भव्य मंदिर बनाया, 7 मंजिल का मंदिर बनाया, और हर एक स्तंभ पे, जैसे कार्विंग किया ना, हर एक स्तंभ पे कृष्ण की लीला का कार्विंग किया है, कहीं रासलीला है, कहीं माखन चोरी है, कहीं कुछ है, कहीं भाग रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं ग्वाल बालों का खेल रहे हैं, नदी में कूद रहे हैं, परफेक्ट डिजाइन का, हर एक खंभ के अनेक लीलाएं, ऐसे हजारों खंभ हैं उसके अंदर, वो सब में अनेक लीलाओं को कार्विंग किया उन्होंने। इतना भव्य, मतलब आकार में भी और वॉल्यूम में भी और कला में भी भव्यतम मंदिर बनाया उन्होंने, और गोविंद जी को उसमें विराजमान किया गया। जब गोविंद जी का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो वो गोपाल गोस्वामी जीव गोस्वामी के मंदिर में रहते थे, उनके भतीजे के रूप मंदिर में, तो उनकी भजन कुटी उस मंदिर में है। फिर वहीं पर उन्होंने शरीर भी छोड़ा, तो उनकी समाधि भी उसी मंदिर में है। और जब ये मंदिर बन रहा था तो रूप गोस्वामी भी भ्रमण में थे, तो कुछ समय वो टेर कदम में रहे, और टेर कदम में उन्होंने बहुत ग्रंथों की रचना की, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ललित माधव, विदग्ध माधव, ऐसे बहुत सारे दिव्य ग्रंथों का रचना किया उन्होंने। और फिर मंदिर बना दूसरा मंदिर राधा गोविंद जी। अब इनकी बड़ी बहुत दीर्घ कहानी है। उसके बाद में मधु पंडित नाम के भक्त वृंदावन में आए। आज हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं? आपने गोपीनाथ का मंदिर देखा ना? तो कथा मैंने बताई आपको ना? हाँ ठीक है। तो इस तरह से गोविंद जी स्थापन हो गए, इस तरह से मदन मोहन जी स्थापन हो गए। फिर अभी उसके पहले की कहानी जो है कृष्ण भगवान की, कि कृष्ण भगवान खेल खेल रहे थे। एक गांव है उसका नाम है गेंदोवा, और एक नाम है गिडो, और एक नाम है गानबन। एक ही जगह का तीन नाम है। गानबन क्यों है? क्योंकि वहाँ पर ग्वाल बाल जब मूड आएगा तो बैठ के संगीत सभा करते थे, और उनका संगीत सुनने के लिए देवता गंधर्व नीचे आके पक्षी बनकर बैठते थे। इतना सुंदर ग्वाल बाल गाते थे, शास्त्रीय संगीत, रागदारी। और एक नाम है गेंदोवा, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के साथ वहाँ पर गेंद खेलते थे। तो गेंद खेलते खेलते क्या किया भगवान ने, सीतामा की गेंद थी उस समय, इतनी जोर से फेंकी ना, उसी जमुना में गिर गई जानबूझ के। क्योंकि भगवान को पता था कि जमुना जी के अंदर कालिया नाग जो है ना, वो अपना विष फैला के बैठा हुआ है, सब जगह आतंक फैला हुआ है, सब जीव सृष्टि नष्ट हो गई है, कोई हिम्मत नहीं करता, पंछे भी उड़ता है तो पानी में गिर जाता है, इतना पावर था उसके विष में। तो भगवान को उसका दमन करना था, तो गेंद का बहाना बनाया। और एक बहाना था, क्योंकि तो भगवान को राधा रानी ने डांस सिखाया ना, सब लोग सुन रहे हैं क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, तो ये डांस के विद्यार्थी हैं। फिर भी एक बार ना ऐसे बड़े इतराते हुए, मतलब ना वेरी प्राउडली के पुटिंग सम स्टेप्स, ऐसा डांस के कदम डालते हुए, तो गोपियाँ कहती हैं इतना क्यों भाव खाते हो, मतलब इतना क्यों इतराते हो, सीखा तो राधा रानी से ना आपने। बोले ये नहीं, ये मेरा खुद का है, ये राधा रानी से सीखा नहीं मैंने। बोले इतना क्यों गर्व करते हो, इतना तुम्हें गर्व है अपने स्टेप्स पे, तो हमें कोई ऐसा अद्भुत नृत्य दिखाओ तो कभी कभी किसी ने किया नहीं होगा। बोले ठीक है, ज़रूर दिखाएंगे आपको। तो उनको वो भी दिखाने की इच्छा थी। अभी इसमें अद्भुतता क्या है, हम लोग ना ऐसे प्लेटफॉर्म पे डांस करते हैं, फिक्स प्लेटफॉर्म पे, देखो जमीन है ना, इसमें आप डांस कर सकते हैं, स्टेज पे भी डांस कर सकते हैं। लेकिन स्टेज का अगर तो डम 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 हो रहा है तो आप बोलेंगे प्रभु स्टेज अच्छा नहीं है, डांस नहीं हो सकता है, थोड़ा फॉर्म बनाओ उसको, थोड़ा मौजूद बना दो, तो जमीन पे ही डाल दो कारपेट, हम उस पर डांस करेंगे। तो डांस हमेशा स्थिर जगह पर होता है। पानी पे डांस होता है क्या, या दलदल में डांस होता है कभी, या आप नरम नरम गद्दियाँ डाल दो, चार पाँच गद्दियाँ, यू कैन नॉट डांस ऑन दैट, गिर जाओगे आप उसमें, आपको स्थिर भूमि चाहिए। भगवान ने सोचा इनको अस्थिर भूमि पर डांस करके दिखाएंगे। वो है कालिया का सर जो ऐसे 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 हो रहा है, और उस पर भगवान ने डांस किया। तो वो उनको उनका प्लान था। तो बोले सीतामा को बोल रहे, सीतामा मुझे मेरी गेंद दो। भगवान कहते हैं वो जमुना जी में गई, दूसरी गेंद देता हूँ आपको मैं, मेरी नई गेंद देता हूँ। बोले नहीं, बच्चा कैसे बोलते हैं, माला माजाज बॉल पाई चाहिए, मुझे मेरा ही गेंद चाहिए। बच्चे तो बच्चे होते क्या अभी। तो बोले ठीक है अभी चलो जमुना जी में जाते हैं। सब लोग जमुना जी में आए, और सब ने जमुना जी में जाके तुरंत पानी पिया। पानी पीते सारे ग्वाल बाल डेड हो गए, सब लोग मर गए, गिर गए उधर ही, भगवान देख रहे हैं सब। तो भगवान ने उन पर नज़र घुमाई अपनी कृपा दृष्टि, सब लोग जीवित हो गए। और फिर भगवान तब तक तैयारी कर रहे हैं ना, पेड़ पे चढ़ गए। वो जो पेड़ है कालिया घाट, जो मैंने बताया ना, अमृत की कुछ बिंदु गरुड़ ने वहाँ पर डाले थे उसके ऊपर, वो पेड़ पे चढ़ गए और अपना जो फेटा था वो निकाल के कमर में बांध दिया एक पहलवान की तरह, और डंड टपटपाए ऐसे, अभी छलांग लगाने की तैयारी में है। तब सीतामा को होश में आ रही है, तो मेरे गेंद के लिए कालिया के विषैले डो में ये कूद रहा है, अरे कन्हैया नहीं चाहिए मुझे गेंद, आई डोंट वांट माय बॉल, प्लीज कम डाउन, आप नीचे आ जाइए। तब तक भगवान ने छलांग लगा दी, वो आधे बेहोश से हो गए, अरे मैंने कहाँ पर गेंद की जिद की, गेंद क्या चीज़ है कृष्ण के सामने, मैं बेकार में ही जिद की, और वो वाकई में चले गए उसके अंदर। भगवान ने छलांग लगाई। तो हमारे गुरु महाराज ने वृंदावन यात्रा में सात दिन तक एक ही कथा की थी, कालियाघाट की। वो आपको सुनना चाहिए, इतना डिटेल में उन्होंने बताया क्या हुआ एग्जैक्टली। तो संक्षेप में क्या हुआ कि बहुत घमासान युद्ध पानी के नीचे हुआ। भगवान छोटे हो गए, कभी बड़े हो गए, कभी छोटे हो गए, अपने अनिमा लगीमा सिद्धि सब उपयोग करके कभी कॉइल में फंस गए तो वो छोटे होकर निकल गए, फिर वापस उन्हें पकड़ा, ऐसे करके पूरा विष भरे हुए उसके जो मुख थे उसमें बार बार अटैक कर रहा था भगवान को, भगवान उसके मुक्का मार रहे थे। और बहुत कुछ देर के बाद में ना खून ऐसे पृष्ठभाग पे आया नदी के, वो सब बाहर के लोग देख रहे हैं, उनको लगा कि कृष्ण का खून है कि कालिया का खून है, फिर उन्होंने ना बहुत चिंतित होने लगे। खबर पहुंचाई नंदगांव में, उस दिन बलराम जी का बर्थडे था इसलिए रोहिणी मैया नहीं आई थी, बलराम भी रोहिणी तो आती नहीं है, बलराम नहीं आए थे और सब लोग यशोदा मई रोहिणी मैया नंद महाराज सब उसका बर्थडे मनाने में बिजी थे नंदगांव में। तो वो खबर पहुंच गई कि कृष्ण ने छलांग लगा दी कालिया के डैम में, सब बर्थडे वर्थडे छोड़ के सब भाग के आए, बलराम जी भी आए, नंद बाबा बड़े ग्वाल बाल सब भाग के आए। कैसे आए वो नंदगांव से? कृष्ण के और गायों के चरण चिन्हों को पीछा करते करते आए, फॉलोइंग द फुट स्टेप्स ऑफ काउज एंड कृष्ण बलराम, कृष्णा बलराम भी फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पर आए तो क्या देखते हैं, जमीन के ऊपर पानी के ऊपर पूरा खून भरा हुआ है और पानी में उथल पुथल हो रही है अंदर से, पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैया कह रही है मुझे अभी जाना है अंदर उसके, मैं मर जाऊंगी, मेरे बालक मरने वाला तो मैं भी मर जाती हूँ। तो सारे गोपियाँ उनको पकड़ रही है, जाने नहीं दे रहे, तो बेहोश होकर गिर जाती है। ऐसे बहुत अद्भुत वहाँ पर कमोशन हो गया। भगवान ने कहा कि बाहर के लोग ज़्यादा ही टेंशन में है क्योंकि सब प्राण जागने को भी तैयार है, क्योंकि कृष्ण के प्राण गए तो हमें क्यों जूना है। तो भगवान ने तुरंत दर्शन देने का निर्णय लिया उनको और तुरंत कालिया के सर पे छलांग मारी और जल के ऊपर आ गए। तो हम वो फेमस फोटो देखते ना, वो कालिया ऐसे खड़े हैं अपने कॉइल से उसके ऊपर कृष्ण नाच कर रहे हैं, वो तुरंत वो सीन पैदा हो गया और सब लोग देखने लगे। अभी सब लोग तसल्ली हो गए कि कृष्ण है, मरा नहीं है, जीवित है और कालिया पर डांस कर रहा है। ऐसे कोमल उनके मक्खन जैसे चरण कमल, हाँ, जिनका विचार करके गोपियाँ रोती थी, अगर ये चरण कमल अगर कहीं कांटों में फंस जाए, कहीं पत्थर में फंस जाए तो कितना दर्द होगा कृष्ण को, ये सोचकर कृष्ण नहीं रो रहे, गोपियाँ ही रो रही है जब वो जाते थे गाय चराने के लिए। और वो चरण कमल जो मक्खन जैसे मुलायम है वो वज्राघात कर रहे हैं कालिया के सर पर, एक एक फन में इतना विष भरा हुआ है। ऐसा एक चरण रखा ना तो आपको लग रहा है कि इतना स्विफ्ट, कितना सॉफ्ट करण चरण कमल में डांस कर रहे, कोमल नृत्य कर रहे हैं, लेकिन वो चरण कमल का स्पर्श जो है वज्र आघात की तरह उसके सर पे उनको अनुभव हो रहा था और वो थन खाली होता था पूरा पूरा विष, साथ में अग्नि भी निकलती थी और वो जो ऐसा टना हुआ फन है वो ऐसे हो जाता फिर दूसरे फन पे, मतलब अभी पैर इधर रखा है लेकिन थन नीचे, वो थन जो वो जो फन है वो नीचे आ रहा है, इधर पैर रखा है वो नीचे आ रहा है। इसका मतलब डांस कैसे हो रहा है, अस्थिर भूमि पर डांस हो रहा है, वो भी चिकना होता है शरीर उनका बहुत। तो आपने देखा है मेंढक को कभी देखा है, वो उसका शरीर इतना होता है ना वो फिसल जाते हैं अपने हाथ से, वैसा पूरा शरीर है चिकना, उसमें हजार फन पे भगवान डांस कर रहे हैं और जब तक सारे फन विष से खाली नहीं होते उनको डांस करते रहना है। तो गोपियाँ देखकर मोहित हो गई, अरे कितना अद्भुत नाच दिखा रहा है, तो प्रॉमिस किया था ना मैं अद्भुत डांस दिखाऊंगा। वो डांस देखने के लिए गंधर्व भी और किन्नर भी आकाश में पैदा हो गए और देख रहे हैं इतना अद्भुत नृत्य कभी किसने नहीं किया। फिर कुछ गोपियों को ना डांस करने का मोह हुआ कि अकेले कृष्ण नाच रहे हैं हमें भी नाचने का मौका दो, तो कुछ कुछ चुने चुने गोपियों को भगवान ने ले लिया ऊपर और कालिया के थन पर रास नृत्य किया उन्होंने। तब तक कालिया के सारे फन जो है वो विष से मुक्त हो गए थे और हर एक फन पर भगवान के चरण का चिन्ह निर्माण हुआ था, जैसे एक 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 फन है ऐसे हर एक के ऊपर भगवान के चरण चिन्ह, भगवान के चरण के ऊपर जो चिन्ह है उसके साथ। फिर भगवान ने कुछ गोपियों के साथ उस पर रास नृत्य किया। फिर वो जैसे ना ये थोड़ी बाद की बात है, बीच में जब सारे थन खलास हो गए तो भगवान ने सोचा इसको मार डालते हैं, सबका वध कर दे, इसका भी वध करेंगे। तो जब वध होने वाला था तो उसकी पत्नियां वहाँ पर अपने बच्चों को लेकर आई, नाग पत्नियां, उन्होंने बहुत सारा स्तुति किया है भगवान का, विनती की है कि माफ़ कीजिए हमारे पति को, वो तो पापी है लेकिन आप दयालु हैं, हम आपके भक्त हैं, कृपा करके हमारी याचना सुनिए, हमारे पति को छोड़ दीजिए। तो पत्नियों के निवेदन के वजह से भगवान ने निर्णय लिया इसको नहीं मारते हैं, छोड़ देते हैं और उसके बाद गोपियों को लेकर नृत्य किया है। तभी तो कालिया जो था ना वो बहुत द्वेषी और विष भरा था, वो भी शुद्ध भक्त बन गया है, क्योंकि जब द्वेष का वेश द्वेष का क्या कहते हैं आवेश और द्वेष का अस्तित्व निकल जाता है तो हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं। अभी शुद्ध भक्त क्यों नहीं है? अभी भी हमारे अंदर एनवी है, किसी के प्रति है, उसके प्रति है, इसके प्रति है, जो भी बड़ा हमसे होता है उसके प्रति है, सबके प्रति एनवी है। और मूलभूत एनवी भगवान के लिए है, भगवान से हम कंपीट करते हैं, उनका भोग खुद लेना चाहते हैं। तो भी कालिया तो शुद्ध भक्त हो चुका था, फिर भगवान ने कहा तुम यहाँ से चले जाओ, पत्नियों के सहित चले जाओ। तो कालिया वहाँ से निकला है, उसका कदम अभी ना ब्रज के बाहर नहीं जा रहा, क्योंकि भगवान के दिव्य चरणों का स्पर्श प्राप्त किया उसने, दिव्य अनुभूति प्राप्त की है। भगवान के चरण को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। नाग पत्नियाँ भी बोल रही थी उनको कि पता नहीं इन्होंने क्या पुण्य किया है, कोई आचरण कोई साधना विधना न करते हुए आपने साथ सीधे उसके चरण पर अपने शीश पर अपने चरणों का लाभ दिया उसको। हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, मुझे भी पता नहीं है कि ऐसा क्या है कि भगवान ने कालियों का इतना पापी होने पर भी वृंदावन में हाहाकार मचाने के बाद भी अपने चरणों का चिन्ह उसके हर फन पर भेंट रूप में दिया। तो कहते हैं कि वो आगे एक वन है, अजय वन कहते हैं उसको, उसका और एक नाम है जयत, JAIT, वो जयती इस का अपभ्रंश है। अगासुर को मारने के बाद सब गोपियों ग्वाल वालों ने जयती ऑल ग्लोरीज जैसे करके उद्घोषणा की, उसलिए उसका गांव का नाम पड़ा जयत, वहाँ पर अगासुर का भगवान ने वध किया था। वहाँ जाके कालिया रुका बहुत देर तक, फिर बड़े ही हैवी पाँव से वहाँ से गया फिजी आइलैंड, रमणक द्वीप कहते हैं उसको, वहाँ पर उसने अपना आश्रय लिया। अभी भी वहीं पर है, लेकिन वो राक्षसी या पापी कालिया नहीं है, वो प्योर डिवोटी संत कालिया है। और फिजी आइलैंड में पूजनीय व्यक्ति जो है वो कालिया है, द डीटी ऑफ वर्शिप इज कालिया। उसके बाद में सब गोपी ने भगवान से कहा, अरे हमको तो मौका नहीं मिला, आपने कुछ ही गोपियों को मौका दिया। तो कहते हैं भगवान ने वापस कालिया को बुलाया और सारे गोपियों के साथ में उसके फन पर नाच किया, राज नृत्य किया। तो ये सब करने के बाद में भगवान को बहुत ठंड लगी, तो फिर वो वहाँ से निकले और वहाँ पर आके बैठे। मैंने आपको पहले बता दिया, ये कालिया घाट की लीला है। और उसके पहले ही मैं आपको बता दिया कि गौरड़ों ने वहाँ पर बहुत पहले सत्ययुग में समुद्र मंथन के बहुत पहले अमृत कलश रखा था और उसको बिंदु उस पर अर्पण किए थे, ये जानकर कि आगे जाकर द्वापर में भगवान आएंगे, यहाँ पर से कूदेंगे कालिया का दमन करने के लिए। तो सारे जीव सृष्टि खत्म हो गई थी, लेकिन वो पेड़ फिर भी हरा भरा था। एक कारण उसका है अमृत के वजह से, दूसरा कारण है भगवान के चरणों का स्पर्श होते ही वो हरा भरा हो गया, जीवन प्राप्त हो गया। भगवान के होने से ही जीवन प्राप्ति होती है। अगर हमारे अंदर भी जीवन है तो भगवान के वजह से है, और भगवान का अगर चेतना नहीं है तो जीवत शव समान। अगर किसी के जीवन में भगवान नहीं है, वो नहीं चाहते उनको या नहीं भजन करते, उनका जीवन शव के समान है, मुर्दे के समान है, चलते फिरते मुर्दे डोल रहे हैं दुनिया में। जब भगवान आते हैं, भगवान को हम स्वीकार करते हैं, तो हमारा जीवन जीवन हो जाता है, जीवन को जीवंतता प्राप्त हो जाती है। तो ये कालिया घाट की लीला है, अभी जाएंगे तो जरूर वो मटका देखना आप, वो आमतौर पर दिखता नहीं है, थोड़ा पीछे का ऐसा, तो कोई दिखाना चाहिए, ये देखो ये मटका है, तो आपको दिखाई पड़ेगा। मैंने वहाँ पर 30 साल तक अनंत प्रवचन किए अनेक यात्रा में, लेकिन 30 साल के बाद में जो प्रवचन किया उधर के पुजारी बहुत प्रभावित हो गए, बोले प्रभु जी आइए मैं कुछ दिखाता हूँ। मुझे पीछे लेके गए, बोले ये देखो मटका, ये गरुड़ दिन रखा था। तो बोला 30 साल से यार कभी देखा नहीं मैंने। इसका अर्थ क्या होता है, भगवान की धाम की वस्तु जब भगवान का भक्त दिखाएगा तो ये आपको दिखाई पड़ेगा, नहीं तो आप देख रहे हो फिर भी नहीं देख रहे हो। यू सी बट यू डोंट सी, अनलेस समबडी शोज यू, यू सी बट यू डोंट सी, ऐसा है। दान बिहारी में गए थे ना, अगर बताते नहीं आपको कि देखो कृष्ण कंगन पहने हुए हैं, मंगलसूत्र पहने हुए हैं, तो आप ठीक देखते हो चले जाते, फिर आपने सुना तो देखा अरे हाँ कंगन पहने हुए ये तो राधा रानी है। ऐसा है, धाम की हर वस्तु कोई भक्त दिखाएगा तो दिखाई पड़ेगी, आप अपने अपने दिखा पड़े। अगला स्थान है बांके बिहारी जी। इतनी सारी कथाएं एक घंटे में करना है बहुत मुश्किल बात है। एनीवेज कोई बात नहीं, एक शॉर्टकट भी होता है एक लॉन्ग कट भी होता है। तो बांके बिहारी जी ये ब्रज के राजा हैं, हाँ कोई कुछ भी जानता नहीं होगा, लेकिन बांके बिहारी का जरूर जानता है। कहीं भी जाते नहीं होंगे, ब्रज में आते बांके बिहारी का दर्शन करके चले जाते हैं। और सीजन हो ऑफ सीजन हो कुछ भी हो, वहाँ की भीड़ कभी कम नहीं होती है। वहाँ की धक्का मुक्की, अभी तो लगता है कि जो मल्ल युद्ध मल्ल विद्या में निपुण है वही दर्शन कर सकते हैं। ताकत है वही कर सकता है, वही ताकत से बाहर निकल सकता है या अंदर भी घुस सकता है, ये स्थिति है। और ज़्यादा भाव में आ गया, हमारा बहुत भाव से दर्शन कर रहे हैं तो आपके मोबाइल पैसे सब गायब हो जाएंगे, ये भी एक लीला है वहाँ की। हाँ सब क्या करते ना, अभी जहाँ पर कृष्ण था, कृष्ण थे वहीं पर कंस था, जहाँ पर कृष्ण है वहीं बाया है, उधर ही है सब कुछ। कृष्ण बम्बई में नहीं था, उधर ही था जहाँ पर कृष्ण थे। तो जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ पर उसके बाजू में माया होती है, जितनी कृष्णा कॉन्शियसनेस होती है उसकी माया अपने इर्द गिर्द आपके लिए परीक्षा करती रहती है, ठोकती रहती है हमको। तो ललिता जी के अवतार हुए हैं स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास जी निधिवन में भजन करते थे एकांत में। उनकी कुटिया ऐसी थी कि केवल सांप के रूप में ही आप उसके अंदर प्रवेश कर सकते, मतलब सांप की तरह सरपट, क्या कहते हैं उसको, फिसलते हो, आई डोंट नो हाउ टू से इन हिंदी, हाँ क्रॉलिंग, क्रॉलिंग, यू हैव टू क्रॉल। वो कौन सी मैंने बताई थी आपको गुफा कल गोवर्धन के परिक्रमा में, राघव पंडित की गुफा भी ऐसी थी, आपको झुक के जाना पड़ेगा, ऐसा तान के जा सकते नहीं, नम्र होकर जाना पड़ेगा। तो ऐसे कुटिया में वो भजन करते थे ताकि कोई आए नहीं उनके पास। तो वो कुटी में भजन करते हुए निदिया निधि वन में उनके सामने बांके बिहारी अपने आप प्रकट हो गए स्वयं स्फूर्त, किसी ने उनको बनाया नहीं या लाया नहीं, अपने आप प्रकट हो गए। तो कई समय तक तो उन्होंने बांके बिहारी का पूजन निधि वन में ही किया, फिर उनका मंदिर बना। लेकिन जब ये बांके बिहारी का भजन करते, मतलब बांके बिहारी को प्रकट करने के पहले और उसके बाद में निधिवन में भजन करते थे, तो पूरा निधिवन जो वृंदावन के अंदर था वो पूरा वृंदावन पूरा जंगल था, पूरा घना जंगल था। देखो जंगल में रहने के लिए ना हिम्मत चाहिए आदमी को। तो आप सोच सकते हैं कि ये सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, स्वामी हरिदास, ये सब कितने निर्भय होंगे। हमको तो अंधेरे में जाने को भी डर लगता है कभी कभी, शेर आएगा, ये आएगा, वो आएगा, पता नहीं क्या होगा, खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, कितनी असुरक्षित भावना को महसूस करते हैं हम हर प्रकार की। चलो शेर से डरते नहीं होंगे लेकिन भूख का क्या होगा, नींद आएगी कि नहीं आएगी, पता नहीं क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, कितने प्रकार का भय होता है, कितने प्रकार के विचार होते हैं। और कैसे रहेंगे वो, मग्न होकर रहे वो लोग, इतना मग्न होकर रहे कि भगवान को प्रकट होना पड़ा कि कौन इतना मेरा भजन कर रहा है, मैं जाके देख के आता हूँ उनको। इस तरह से मांके बिहारी प्रकट हो गए। तो ये बांके बिहारी की बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं। उनका मंदिर भी जंगल में ही बना था, उसके बाद जब बना तभी पूरे जंगल में। तो एक बुढ़ा आदमी था, उसको अचानक बुढ़ापे में ऐसा अनुभूति हुई कि मैं मरने के पहले ना सर्वोच्च व्यक्ति का मुझे भजन करना है, सेवा करनी है। देखा कि सरपंच यहाँ का सर्वोच्च व्यक्ति, उसकी सेवा में लग गया, सब कुछ छोड़ के। कुछ देर बाद लगा कि कोई मंत्री आया तो सरपंच उसकी सेवा में लग गया। उसको लगा कि अरे मंत्री के ऊपर सरपंच, सरपंच के ऊपर मंत्री है, सरपंच छोड़ दिया मंत्री की सेवा में लग गया। फिर बाद में देखा कि मुख्यमंत्री आ गया एक दिन, तो मंत्री जी भाग रहे उनके आगे पीछे, तो मंत्री के ऊपर मुख्यमंत्री है उनको छोड़ दिया, मुख्यमंत्री के सेवा में लग गए, पीछे मत देखो आगे देखो इधर। सो एक दिन देखा कि प्रधानमंत्री आए, तो एक नहीं ऐसे अनेक मुख्यमंत्री उनकी सेवा में लगे हुए, उनको छोड़ के प्रधानमंत्री की सेवा में लगे। फिर एक दिन राजा आए तो प्रधानमंत्री भी उनकी सेवा में लगे हुए, तो उनको भी छोड़ा, तब बहुत उम्र हो चुकी थी। और जब ये पता चला तो प्रधानमंत्री को छोड़ के राजा की सेवा में आ गए, और अभी राजा की सेवा में है, दिन रात राजा की सेवा में है। एक दिन क्या देखते हैं, राजा रात को ना देर से सब दुनिया सोने के बाद में, राजा जो है ना राजवस्त्र उतार के, सूती वस्त्र पहन के, ना मुकुट है ना कुछ है, एक वस्त्र पहन कर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, चप्पल भी नहीं पहने हुए निकल गए, तो ये भी उनके पीछे सेवा करने के लिए निकल गए। तो देखते हैं कि राजा बीच रात में जाकर बांके बिहारी की सेवा में लगे हुए, तो उनको समझ में आया कि राजा के ऊपर भी एक बड़ा राजा है। तो राजा को छोड़कर ना रात में ही वहाँ पर सेवा में लग गए, मतलब अपने आप को रख दिया उधर। तो राजा सेवा करके चला गया, क्योंकि रोज का नियम था, तो पुजारी भी पता था कि राजा आते ही सेवा करते, फिर हमको बंद करना है मंदिर। राजा चले गए तो वो वापस नहीं गया, वो मंदिर के बाहर ही खड़ा हो गया। कुछ देर के बाद में पुजारी आए, मंदिर भगवान को शयन कराया, कड़ी लगा दी, ताला लगा दिया और वो जा रहे हैं। तो ये पुजारी को कहते हैं मुझे बाकी बारी की सेवा करनी है। तो वो कहते हैं ठीक है ना, कल सुबह आ जाओ ना, कल सुबह सेवा दे देंगे आपको। बोले नहीं, पता नहीं मैं इतना वृद्ध हो गया हूँ, कल सुबह तक जीऊँगा नहीं जीऊँगा, मुझे अभी सेवा में लगना है मरने के पहले। तो जब उनको लगा पुजारी उनको कि ये पागल आदमी है, वो कह रहे हैं ना अभी भगवान शयन कर चुके, अभी सेवा नहीं है, अभी कल सेवा होगी, नहीं नहीं कुछ तो सेवा दो। तो उनको लगा अभी क्या बुढ़े को भी क्या पैसे पीछे छुड़ाएं। उन्होंने कहा देखो ये दरवाज़ा बंद किया ना, इसमें से बाहर अंदर कोई जाना नहीं चाहिए, अभी ताला लगे तो कौन अंदर बाहर जाएगा, लेकिन बुढ़े से भी छुड़ाना है पीछा। तो उन्होंने कहा कि यहाँ खड़े हो जाओ और यहाँ से कोई अंदर बाहर नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, खड़ा हो गया, फिर तुरंत सेवा में लग गया, ऑन द सर्विस। पुजारी चले गए, कुछ ही मिनट में स्वयं बांकी बिहारी बाहर आ गए, बंद दरवाजे से लाग ताला मिला वैसे कैसे सीधा आगे बाहर। तो एक रुको रुको रुको, यहाँ से किसी को अंदर बाहर जाना मना है, मैं यहाँ का द्वारपाल हूँ, बांकी बिहारी की सेवा में हूँ। जैसे बांकी बिहारी को बोल रहे, तो बांकी बिहारी कहते हैं मैं खुद बांकी बिहारी हूँ। तुरंत चरणों में दंडवत प्रणाम किया, महाराज जी मैं आपकी सेवा में हूँ, मुझे सेवा दीजिए। तो भगवान वो जो पुजारी जैसे नहीं है, भगवान तो भगवान है, बोले चलो मेरे साथ। तो चले गए भगवान के पीछे पीछे। तो भगवान वहाँ बंसीवट के पास गए और उन्होंने कहा भैया यहाँ रुको आप, मैं रास में जा रहा हूँ। और भगवान रास लीला में गए, रात भर डांस किया भगवान ने गोपियों के साथ, और ये बाहर खड़े और 4 बजे के आसपास ना पूरा भोर के समय थक के भगवान ऐसे बाहर आते हैं, बोले चलो। तो वापस चल लेते आते हैं। तो उस समय तो अभी रात को पहले निकले थे तो ठंड नहीं थी, लेकिन जब 4 बजे लौट के आए तो बहुत ठंड, और बूढ़ा भी कांप रहे हैं। तो भगवान अभी मंदिर में वो बंद दरवाजे में से ताला बंद दरवाजे प्रवेश कर ही रहे हैं, तो भगवान देखते हैं कि बेचारा बूढ़ा कांप रहा है। तो अपने ऊपर का शॉल निकाल के ऊनी शॉल उस पर डालते हैं, बोलते बैठो आराम से, और बंद दरवाजे से अंदर चले जाते हैं और अपने गर्भगृह में बैठ जाते हैं जहाँ पर शयन किया वैसी अवस्था में। वो अंदर गए ही नहीं, कुछ देर के बाद पुजारी आ जाते हैं मंगला करने के लिए, और ये बोल रहे हैं अभी मंदिर नहीं खुला है, अभी अभी आए वो, अभी सोए ही नहीं है। अरे तो मेरे को लग रहा है पागल, अभी तो रियल पागल लग रहा है, किधर भगवान, दरवाजा बंद है और रात भर इधर खड़ा है और मुझे एकदम चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मत खोलना मत खोलना अभी मत खोलना, हे पागल चुप बैठ करके वो ताला खोल के अंदर चले जाते हैं। और ताला खोलते हैं, भगवान को शयन करा, शयन में से जगाते हैं ना, उत्थापन करते हैं, देखते हैं शॉल गायब है जो रात को पहनाई थी। तो उनको लगा ये बूढ़ा ही कुछ चोर है, पागल को उनका नाटक कर रहा है, लेकिन यही चोर है, इसने कुछ किया होगा। दोबारा क्या पूछते हैं, हे बुढ़े तुमने शॉल देखी है क्या, तो ये क्या शॉल है ना मेरे पर, तुमने शॉल चोरी की है। मैं नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। तो ठाकुर जी रात भर रास करते रहे, उनके पीछे पीछे गया, वहाँ पर पहरा दिया, वापस आया, और जब गया ठाकुर जी अंदर गए तो मेरे को शाल पहना कर गए वो। तब उनको विश्वास हुआ कि अरे अंदर की शाल लॉक में से कौन निकाल सकता है, तो उसके चरणों में गिर गए वो। ये एक उनकी कथा है। तब से लेकर बांके बिहारी के मंगला आरती 9:30 बजे होती है, एक ही मंदिर है पूरा ब्रज में, इसकी मंगला 9:30 को होती है और सर्दियों में 10 बजे होती है। बाकी सारे मंदिरों में श्याम सुंदर में 3:30 को होती है, नंदगांव में 3:30 को होती है, बाकी सब मंदिर में 4, 4:30 तक, 5 बजे तक खत्म हो जाती है मंगला आरती। सबसे लास्ट राधा वल्लभ में 6 बजे होती है, लेकिन बांके बिहारी महाराज 9:30। भाव ये है कि रात भर रासलीला करते हैं तो उनको जगाओ मत जल्दी। और उनका एक और महिमा है, कोई प्रेम से देखेगा ना उनको तो वो अल्टर छोड़ के आ जाते हैं उनके साथ, सब चले जाते हैं। नजरें मिलाई आपने प्रेम से तो हो सकता है आपके साथ में चलेंगे वो। तो पुजारी लोग क्या करते हैं, उनको पता है हमारे बांके बिहारी जी कैसे हैं, तो वो आपकी नजरें मिलने के पहले पर्दा बंद काट देते हैं, उसको कनेक्शन होने के पहले कट, फिर दोबारा जोड़ने का उसके वापस कट। तो वो देते ही नहीं उनको, क्योंकि एक बार ऐसी घटना हुई थी कि उन्होंने पर्दा बंद किया था भोग लगाने के लिए, तो पर्दा खुला था बांकी बिहारी गायब थी, सब जगह ढूंढ रहे हैं तो बांके बिहारी मंदिर से बाहर एक भक्त से चर्चा कर रहे हैं प्रेम की, मंदिर छोड़ के मंदिर के बाहर, तब से ये चालू हो गया कि भाई नज़रें मिलाते हैं तो चले जाते हैं। तो बांके बिहारी का बहुत चमत्कार है, बहुत ज़्यादा चमत्कार है। एक दिन क्या हुआ कि यहाँ पर ना ऐसे ऐसे भक्त संत लोग हैं जो घर में बैठ के बांके बिहारी का दर्शन करते रहते। तो किसी ने ऐसा परीक्षा करने के लिए उनको बोला, पूछा, 12 बजे रात की बात है, ऐसे ही उनका मतलब कैसा है ना, देखो संत संत होता है अपने लेवल पे होता है, लेकिन लोग उनका ना मजाक भी करते रहते हैं, लोगों को क्या पता है दिव्यता क्या होती है, वो तो ऐसे ही सूरदास जी थे, मैंने बताया ना, कुछ लोग उनका मजाक करते थे, बताओ बताओ क्या ठाकुर जी दर्शन, क्या श्रृंगार पहना है, तो पूरा वर्णन करते थे, वो शांत हो जाते थे। ऐसे ही अंधे को आप बोल रहे हो, दिखाओ क्या देख रहे भगवान, क्या पहन रहे। तो वैसे किसी ने पूछा 12 बजे उस संत को कि बांके बिहारी क्या कर रहे हैं अभी, तो उसने बोला कि एक मिठाई की दुकान में मिठाई खा रहे हैं। तो बोला क्या बात कर रहे हो, शयन तो 10 बजे हो गया उनका, बोले जाओ देखो। तो वो रात को एक बुड्ढा मिठाई वाला जो बांके बिहारी के सामने दुकान उसका है, बहुत सारी दुकान है, वो कल के लिए जो मिठाई बनाया है वो रात को 12 बजे तैयार हो गया, उसको भोग लगा रहा है घंटी लगा के, उसके ऊपर चित्रपट है उसके दुकान में, और बड़ा भक्त है बांके बिहारी का, वो घंटी लगा रहा था, बांके बिहारी अपना मंदिर छोड़ के उसके दुकान में जाके मिठाई खा रहे हैं। और भी ऐसे कई चमत्कारी कथाएं उनकी। तो एनीवेज बांके बिहारी का दर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, कठिन भी है। और स्वामी हरिदास जी एक बड़े संगीतज्ञ संत थे, आज भी स्वामी हरिदास के नाम से भारत में बहुत संगीत प्रतियोगिता होती है, म्यूजिकल कॉम्पिटिशन्स उनके नाम से। हमारे रमेश बाबा जी महाराज में गोल्ड बेल्ट थे 12 साल की उम्र में, स्वामी हरिदास संगीत सभा संगीत प्रतियोगिता अखिल भारतीय। तो ये हुआ बांके बिहारी जी की कथा संक्षेप में। अभी राधा वल्लभ जी की कथा जो है वो 15 मिनट में करनी है। हा? तो जैसे ललिता जी का अवतार हुआ उसी के आसपास महाप्रभु जी का भी अवतार हुआ, उसी के आसपास बहुत लोगों का अवतार हुआ, वल्लभाचार्य भी थे, थोड़े सीनियर थे वो। तो भगवान के वंशी का भी अवतार हुआ उस समय पे, उनका नाम था हरिवंश, हरिवंश यानी बंसी। तो वो हुआ मध्य प्रदेश में कहीं। तो बचपन से ही उनका जीवन बहुत दिव्य रहा, फिर तो उनका विवाह हुआ 2 कन्याओं से, फिर भजन में लगे रहे, फिर एक दिन भगवान की प्रेरणा हुई कि वृंदावन जाओ, तो वृंदावन आए। और यहाँ पर एक भक्त था ब्राह्मण आत्मदेव, और वो आत्मदेव ब्राह्मण था ना, वो शिवजी का भक्त था, बड़ा बहुत शुद्ध भक्त था। तो जनरली नहीं होता है, शिवजी के भक्त हमेशा कुछ ना कुछ मांगने के लिए पहुँचते हैं, है ना, कामय स्थैत्य ऋत ज्ञाना प्रपद्यंते अन्य देवता। जब किसी काम वासना से व्याकुल होते लोग तो देवताओं के पास जाके उसकी याचना करते रहते हैं, तो उनका दिमाग जो है ना ऋत ज्ञाना भ्रष्ट हो जाता है। तो लेकिन ये ऐसा नहीं था, ये बहुत निरपेक्ष भक्त था शिव जी का, जो कभी कैसे होता नहीं है, केवल शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनका भजन करता था वो। तो शिव जी बड़े क्या होता है ना, देखो देवताओं के पास सब लोग मांगते हैं मांगते हैं मांगते हैं, ये दो ये दो ये दो, तो भी वो परेशान हो जाते हैं, कोई भी मेरे लिए नहीं आता है, अपने लिए आता है, हर बार नई लिस्ट लेके आता है, मेरा खाली उपयोग करता है, ये दो वो दो ये दो वो दो, ऑर्डर सप्लायर। तो ऐसा कोई बिरला भक्त बीच में आ गया जो कुछ नहीं मांगता है, तो देवताओं को इच्छा होती है कुछ देने की, इसको कुछ देना चाहिए, कुछ मांगता ही नहीं है। उसके स्वप्न में प्रकट हो गए, बोले आत्मदेव कुछ मांग ले, मैं कुछ देना चाहता हूँ। बोले महाराज हम कुछ मांगने के लिए भजन नहीं कर रहे आपका, हम आपसे प्रेम करते हैं। बोले नहीं नहीं हमारा दर्शन खाली नहीं जाता है, आपको कुछ ना कुछ मांगना ही होगा। तो आत्मदेव को समझ में आया कि अगर मैं मांगूंगा तो ये प्रसन्न होंगे, कुछ चाहने की वजह से नहीं मांगा उन्होंने, लेकिन मैं मांगूंगा तो ये खुश हो जाएंगे। और उनकी प्रसन्नता के लिए उन्होंने कहा आपको जो सबसे प्रिय है वो मुझे आप दे दो। तो शिवजी स्वप्न में डांस करने लगे आनंद से कि आज तक मुझे ऐसा भक्त नहीं मिला, और मिला तो भी कैसा, तो मेरी प्रिय वस्तु मांगने वाला कोई नहीं मिला मुझे। तो बहुत खुश हो गए, बोले कि आपके कुएं में उतरो आप, और उसमें सुरंग है राइट साइड में, उस सुरंग के कोने में एंड में आपको मेरी प्रिय वस्तु मिलेगी। तो रात को ही उठाओ 2 बजे, स्नान करके कुएं में उतरा और टनल में गया अंदर, तो उनको राधा वल्लभ जी की मूर्ति मिली। तो राधा वल्लभ जी शंकर जी के इष्ट हैं, और तब से वो राधा वल्लभ जी का पूजन करने लगे, और वे आत्मदेव जी यहाँ पर राधा वल्लभ जी का पूजन कर रहे हैं। हरिवंशी वृंदावन में आ गए। भगवान ने स्वप्न दिया कि वे आपको आत्मदेव मिलेगा, तो आत्मदेव अपनी कन्या और मुझे आपको दान में देगा दहेज में, विवाह में। और आत्मदेव को स्वप्न में राधा वल्लभ जी आए और बोला कि कल आपको मेरे बंसी के अवतार वृंदावन में मिलेंगे, उनको आपको मुझे देना है दहेज में और बेटी को शादी में देना है। तो दोनों का कोई व्हाट्सएप में फोटो नहीं आया, ये हरिवंश है ये आत्मदेव है ऐसा दिखता है और ये एड्रेस में मिलेगा आपको, वहाँ जाकर खड़े होना 5 बजे। ऐसा नहीं है, सब हृदय का कम्युनिकेशन है। जैसे ही वो सामने आए तो दोनों को पता चला कि ये हरिदेव है, हरिवंश है और ये आत्मदेव है। दोनों का जो मिलन हुआ है ना, उसका बहुत सुंदर वर्णन है। इतना देर तक उन्होंने अपने आप को गले लगाया है, गलबैया दिए हैं, इतने अश्रु बहाए हैं प्रेम के, हाँ, कि भगवान के निर्देश से दोनों मिल रहे हैं। देखो उनका मिलन का कारण क्या है, स्वयं भगवान ने उनका मिलन का अपॉइंटमेंट बनाया है। बहुत देर तक प्रेम का आदान प्रदान होने के बाद में वो कन्या को और राधा वल्लभ जी को लेकर आकर उनको दे देते हैं। तो कन्या विवाह होता है उनका उनके साथ, तो कन्या को वो मध्य प्रदेश भेज देते हैं और राधा वल्लभ जी को लेकर, ये हमारा अस्पताल है ना भक्ति वेदांत अस्पताल, उसके बाजू में एक जगह है मदन टेर, एकदम बाजू में 2 मिनट ऐसा टर्न करेंगे तो पहला ही आता है वो। उधर एक बड़ा बरगद का पेड़ था, उस बरगद के पेड़ में पुराने ज़माने में और अभी भी बहुत बड़े बड़े होल्स हुआ करते थे, बिग रूम लाइक होल्स, यू नो सा कमरा, इट्स लाइक ड्राइंग रूम, पर कभी कभी 1, 2, 3, 4 भी हुआ करते थे, एक इतना विशाल पेड़ हुआ करते थे, लाइक ट्रिप्लेक्स हाउस, लाइक डुप्लेक्स हाउस, एक लेवल पे एक छेद, ऊपर से और एक छेद। तो ये जो मदन टेर नाम के जमुना के किनारे वन में रहते थे, उस पेड़ में 3 थे ऐसे, तो एक में वो खुद रहते थे भजन करते हुए, एक में राधा वल्लभ जी को रखा था और तीसरे वाले में सब सामान रखा था, पोशाक मुरली अलंकार सब रखा था, और इसी ट्रिप्लेक्स हाउस में भजन करते थे राधा वल्लभ जी का। उनके प्रभाव से पूरे वृंदावन में जितने खूंखार जानवर थे वो मित्र बन गए, हत्या करने वाले खाने वाले जानवर थे वो सब मित्र बन गए, इतना उनका प्रभाव था। संत का प्रभाव ऐसे होता है। अभी आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हो गए, अभी गुरु जी से मिलूंगा और सब मेरा समस्या बोलूंगा उनको, भी परेशान हो गया हूँ मैं, और गुरु जी अपॉइंटमेंट देते हैं वो उनके कमरे में प्रवेश करते हैं, सब प्रश्न ही भूल जाते हैं, क्यों आए थे महाराज जी, महाराज जी ओके यस व्हाट इज द प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम महाराज, अरे आपने कहा था बहुत समस्या है, क्योंकि संत के सानिध्य में पहुँचते ही ना ऐसा वातावरण का प्रभाव होता है कि हम सब दुख दर्द भूल जाते हैं। संतों का ये ऑरा होता है, प्रभाव क्षेत्र, इसलिए संतों के संग में रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि बाहर जाएंगे तुरंत दुनिया का जो ऑरा है वो आपको प्रभावित करेगा। तो धनी लोगों के बीच में पार्टी में जाएंगे आपको लगेगा अरे मैं तो कितनी गरीब हूँ, वो देखो कितने धनी हैं, देखो कौन सी गाड़ी में आए हैं, वो देखो, वो प्रभाव होगा। संतों की सभा में जाएंगे तो आपको लगेगा देखो ये कितना जप करता है, अच्छा ये कितने महान संत है, अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है पूरा। तो अगर अपना थॉट प्रोसेस हमेशा शुद्ध मार्ग पर रखना है तो सत्संगत में बने रहो आप, कॉन्स्टेंटली रिमेन इन सत्संगति, ताकि आपको लगेगा नहीं मेरे पास पैसे भी कम है, वो नेबर ज़्यादा रिच है मुझसे, अभी अभी नई ऑडी ली है उसने, अभी नई मर्सिडीज ली है, मेरे पास तो अभी भी पुरानी बड़ी गाड़ी है। ये सारे विचार जो है ना ये दुनियादारी के प्रभाव में आते हैं, और भक्ति के विषय में विचार जो है भक्तों के संग में आते हैं। तो इसकी इतनी ख्याति हो गई हरिवंश जी की, कुछ समय एक डाकू था यहाँ पर वृंदावन में था वो, और सारा जोर जबरदस्ती लूट लूट कर पूरा वृंदावन अपना बना लिया था, यानी जोर जबरदस्ती का राजा बन गया था वृंदावन का। अनाभिषिक्त तो मतलब कोई उसका अभिषेक वगैरह मान्यता प्राप्त नहीं था वो, लेकिन अपने बल के प्रभाव से लूट मार करके जमीन हड़प करके सबका पूरा वृंदावन का राजा बन गया था वो। उसका नाम था नरवाहन, और नरवाहन राजा के कान पर इस संत की ख्याति आ जाती है कि अरे कोई संत है वो इतना फेमस हो गया है कि उसके होने से सारा वृंदावन जो है वो उसी के भाव में लोल रहा है। तो उसको सहन नहीं हुआ कि मुझसे ज़्यादा पवित्र मतलब प्रसिद्ध कौन हो सकता है, ताकि उसको ख़त्म ही कर दूंगा मैं। तो निकलता है घोड़ा लेकर, राज मुकुट पहनकर, राज वस्त्र अलंकार, मोजड़ी तलवार लेके कि इसका शिरच्छेद कर दूंगा, और आता है वृंदावन की ओर जमुना जी के रेत में घोड़ा लेकर जा रहा है। बोलता है बाद में बोलता है अरे एक साधु को मारने के लिए इतना घोड़ा घोड़ा तलवार की क्या जरूरत है, तलवार फेंक देता है घोड़ा भी छोड़ देता है और पैदल चलने लगता है। तो पैदल चलते उसके पैर में जमुना की रेत बूट में घुसती है उसके मोजड़ी में, तो मोजड़ी उड़ा के फेंक देता है। मतलब ऐसा द्वेष है उसके मन में, ऐसा द्वेष है कि जाके उसको मार दूं मैं, लेकिन एक एक चीज़ को त्याग दे रहे हैं वो। समझ में आ रहा है आपको? उसको समझ में नहीं आ रहा है, घोड़ा त्याग दिया, तलवार त्याग दिया, मुकुट त्याग दिया, बाद में बहुत गर्मी होने लगी तो कपड़े भी उतार के फेंक दिए उसने, जूता भी उतार के फेंक दिया। और जब तक हित हरिवंश गोस्वामी के स्थान पर पहुंचा तो केवल एक कोपिन बची थी उसके ऊपर, उसको भान नहीं उसका कि मैं राजवस्त्र पहन के आया था, अभी केवल कोपिन में एंट्री कर रहा हूँ। राखे से लाल लाल, कहाँ है इधर, कहाँ है हरिवंश, कौन है वो? तो महाराज जी बैठे हुए हैं तो उनको लाल आंखों से घूर के दिख रहा है। तो हरिवंश जी बोलते हैं, अरे नरवाहन, प्रभु निहार, मुझे क्यों निहार रहा है? निहारने लायक वस्तु प्रभु है, मुझे क्यों घूर घूर को देख रहा है? तो ऐसे टर्न किया उसने और प्रभु को देखा। प्रभु को देखते ही पूरा पिघल गया वो, कंप्लीट। अभी अभी तक तो मारने के भाव में, द्वेष में था वो, हिंसक भावना में था, लेकिन वैसे तो हम सब लोग भगवान को देखते हैं लेकिन कोई पिघलते नहीं है। लेकिन कोई संत की कृपा होती है ना, उनकी कृपा से देखते हैं ना, तो ये चमत्कार होता है। संत ने कहा प्रभु निहार, तो संत की कृपा से नरवाहन जैसा खूंखार डाकू जो है ना, वो पिघल गया पूरा। वहीं दंडवत किया, वहीं दंडवत महाराज जी के चरणों में किया, महाराज माफ करना, मैं आपको मारने के लिए आया था लेकिन मैं आपको शिष्य बनना चाहता हूँ। वहीं रह गया वो, वापस गया ही नहीं। तो उनको लगा कि महाराज गए जंगल में तो कोई शेर वेर से मुठभेड़ हो गई होगी और शेर ने खा दिया होगा उनको, कोई योग्य आदमी को राजा बना दिया और उनका काम शुरू हो गया वहाँ पर, और ये रह गए यहाँ पर कोपिन में ही रह गए। कोपिन के ऊपर कुछ बाद में पहना ही नहीं उन्होंने, महाराज जी की सेवा में रहे। तो एक दिन उनके जो थे ना सरदार, बाकी सरदार, उनके एक स्पेशल तरीका था लूटने का। वो क्या करते थे, किसी को लूटते थे ना, लूटने के बाद ऐसा हम लोग क्या करते हैं, चलो पर्स छीन लिया तो भाग जाते हैं, बाकी कुछ करते नहीं है। लेकिन ये क्या करते थे, लूटने वाले व्यक्ति से सारी वस्तुएं लूट के उसके बाद में क्या करते थे, उस व्यक्ति के वस्त्र उतार कर उसको नंगा उल्टा पेड़ पर टांग के रखते चले जाते थे। तो एक व्यक्ति को लूट लिया उन्होंने ऐसे अंधेरे में, वो उसका कपड़ा उतार के उसको उल्टा टांग दिया पेड़ पे। तो बेचारा चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, तो एक बुढ़िया आई, बोली क्यों बचाओ बचाओ बोलते हो, नरवाहन नरवान बोलो, क्योंकि नरवान संत जो है, वो संत बन गया ना, संत नरवान जो दिनों की रक्षा करते हैं तो दुखी आ रहे हैं, तो नरवान नरवान पुकारा। नरवान वहाँ ही पहुँच गए जहाँ पुकार आई, देखा तो हमारे ही लोगों का काम है ये स्टाइल जो है हमारे लोगों का है। उसको बेचारे को उतारा, सीधे लेकर गया अपने दरबार में जहाँ पर वो रहते थे। सब लोग एकदम अचंभित हो गए, अरे महाराज आप जिंदा हो? हाँ मैं वापस नहीं आऊँगा, चिंता मत करना, आप बैठे रहो यहाँ पर, ये आदमी का सारा धन लुटा है वापस कर दो, राज वस्त्र पहनाओ, पालकी में घर में बिठाओ, पहुँचा दो उसको। तो वो तो इतने खूंखार थे, सब डरते थे उनको, सब धन लौटा दिया, ऊपर से और भी धन दिया, भेंट दिया, राज वस्त्र दिए, मुकुट दिया, पालकी दिया, चार आदमी दिए, पहुँचा दिया घर पर उसको। तो ये नरवान बहुत बड़ा संत बना बाद में, उसका भक्तमाल ग्रंथ में भी कथा आती है, नरवान डाकू संत कैसे बना, संत की कृपा से। तो उसने एक दिन फिर महाराज को कहा, महाराज अब लूट माट करके मैंने ये पूरा वृंदावन जो है छीन लिया लोगों से, आज मैं आपको ये दान देना चाहता हूँ, मैं एक बाण मारूंगा और बाण जहाँ तक जाएगा वो सारी भूमि आपको दान दे दूंगा। तो उसने ऐसा बाण मारा जो पूरा वृंदावन को घेर के जमुना जी को पार गया, और वहाँ पर भी एक मंदिर है राधा रानी का मानसरोवर के पास, वो भी राधा वल्लभ जी के ही कब्जे में है, क्योंकि वो हित हरिवंश को उन्होंने वो सब भूमि दान कर दी। मानसरोवर भी उनका ही है, राधा रानी का जो मंदिर है मानसरोवर का वो भी उनका ही है, पूरा क्षेत्र उनका है और पूरा वृंदावन उनको दे दिया उन्होंने। तो उनके शिष्य हुए हरिराम राय जी, संत हरिराम जी, हरिराम व्यास जी सॉरी। तो उन्होंने उनको कुछ जगह दिया, जुगल किशोर का मंदिर बनाया, राधा वल्लभ का मंदिर बनाया, ये जो जंगल में थे राधा वल्लभ जी वो अभी अपने मंदिर में चले गए, ऐसे बहुत सारा लीला है उनका। बहुत सुंदर सुंदर कथाएँ हैं राधा वल्लभ जी की। राधा वल्लभ जी और हमारे गुरु जी का भी बहुत स्नेह था, अभी भी है, क्योंकि राधा वल्लभ जी जो गोस्वामी जो है राधेश लाल जी महाराज, वो भी उस थोड़े ही उनके उम्र के थे जब ये जटाधारी होकर ब्रज में ढूंढ रहे थे भगवान को। तो मैंने कहा ना आपको, जो कुत्ता जैसा कोई काटा उनको सेवा कुंज के पास, तो चल के किसके मंदिर में आए थे वो 6 बजे, राधा वल्लभ जी के मंदिर में मंगला में आए थे। तो यही गोस्वामी उन्होंने बताया कि अरे आपके पैर में तो खून बह रहा है, आपको तो रेबीज का इंजेक्शन लेना चाहिए। तो राधा वल्लभ जी के गोस्वामी, राधा रमन के गोस्वामी, इनका हमारे संप्रदाय के सबका अच्छा संबंध है, बहुत अच्छा प्रेम का। और कृपा है भगवान की बहुत। राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, ये सब लोग अकेले अकेले प्रकट हो गए थे। उसके बाद में उनके पास में क्या कहते हैं उसको, गद्दी सेवा कहते हैं, गद्दी सेवा। हाँ, उस रूप में राधा रानी की सेवा करते हैं। एक ऐसा थोड़ा टील बनाते हैं, उसके अंदर मुकुट लगाते हैं, राधा रानी का श्रृंगार करते हैं और राधा रानी को उस पाप से सेवा करते हैं। और कहते हैं राधा रानी उनके अंग में ही है, तो उसके प्रतिनिधि के रूप में एक चोटी बनाते हैं लंबी, वो राधा रानी का प्रतीक है। राधा रमन जी में भी होती है, राधा वल्लभ में भी होती है, बांकी बिहारी की सबकी होती है, जहाँ राधा रानी नहीं खड़ी है उनके पास। जय जय श्री राधे श्याम। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है?
राधा वल्लभ जी के गोस्वामी का नाम क्या बताया?
राधेश लाल जी स्वामी महाराज,
अभी भी
है ना, बिल्कुल बैठे हुए, 75 ईयर्स हो गए उनके अभी 15 सितंबर को। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। सबको ये सोचो।